Hare Krishna, this is our great fortune to hear His Grace Mohan Rupa Prabhuji on a very special day. This is the appearance day of Srila Bhakti Vinod Thakur on 7th of September 2014, and we are hearing at ISKCON Dwarka, New Delhi, morning class. Hare Krishna.
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Om Agyana Timrandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobheshtam Sadhitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadartikam Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Namo Bhakti Vinodaya Pulit,
Namo Bhakti Vinodaya,
Sachidananda Namine,
Gaur Shakti Sarupaya,
Rupanugavarayate Bhagavan bahut hi pavitra din hai Srila Bhakti Vinod Thakur ka avirbhav divas hum yahan mana rahe hain aur jaise aap jante hi hain vaishnavon ka avirbhav aur tirubhav dono ka hi bada mahatva hai aur aaj ke din Srila Bhakti Vinod Thakur us prithvi mein prakat hue prithvi mahakar गौरंग महाप्रभु का धाम प्रकट करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु के आदरण को स्थापित करने के लिए भक्तों ठाकुर हमारे संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख आचार्यों में से हैं जिन्होंने वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन की पुनः स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है वो वास्तव में ठाकुर भक्तिनो ठाकुर के द्वारा ही प्रारंभ हुआ। इस कलयुग में पुनः प्रारंभ हुआ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद नवदीप धाम अप्रकट हो चुका था और पूरा नवदीप धाम जो है गंगा जी से भर गया था और लीला स्थलियां सारी लुप्त हो गई थी। तो ऐसे सैकड़ों सालों के लिए नवदीप धाम जो है अप्रकट रहा और भक्तों ठाकुर के आने तक भी नवदीप धाम जो है वहां की लीला स्थलियां सारी लुप्त हो चुकी। यहां तक कि उनका जन्म स्थान भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी योग पीठ जिसको कहते हैं वो भी लुप्त हो गया था। तो भक्ति ठाकुर इसलिए जिम्मेदार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की पुनः स्थापना करने के लिए और यानी कि मिड 19th सेंचुरी में उस समय बहुत सारे अपसंप्रदाय भी प्रकट हो गए थे और इन अपसंप्रदायों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को यथारूप नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था बल्कि अब सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा था। अब सिद्धांत का मतलब यह है कि देखने में तो लगते थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हैं लेकिन वास्तव में वो गौरंग महाप्रभु के संप्रदाय के नहीं थे। ठाकुर भक्तों ने स्वयं ऐसे 14 अब संप्रदायों का पता लगाया बंगाल और उड़ीसा में। आउल बाउल करता भाजा नेड़ा दारावे साई साइजा सखी वेगी स्वार्थ जात गोसाई अटी बाड़ी चूड़ाधारी गौरंग नागरी आउल बाउल संप्रदाय। तो ये सब देखने में लगते थे जैसे गौरंग नागरी की संप्रदाय है उसमें चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं कई स्त्रियों के साथ और वो गौरंग नागर कहा जाता है। तो गौरंग महाप्रभु नवदीप में कभी नागर नहीं, वो ब्रजवा नागर है जब स्वयं कृष्ण के रूप में आए हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु में नागर नहीं है, वो एक भक्त के रूप में आए हैं। तो रासलीला करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता और चैतन्य महाप्रभु की सेवा तो दास्य रस में होती है। तो इस कारण से ये अब सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और ऐसे ही कई और संप्रदाय थे जैसे अटीवाड़ी संप्रदाय जिसमें बिश्केशन नामक एक व्यक्ति आया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कई ऐसे संप्रदाय हैं, सखी बेटी है जिसमें कोई गोपी का स्वरूप, गोपी का वेश धारण कर लेता है, स्त्री का रूप धारण कर लेता है, बोलता मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं। तो इस तरह से सखी बेटी, आइए अभी भी आप ब्रज में बहुत सारे देख सकते हैं सखी के रूप में, सखी के वेश में पुरुष ही होते हैं और सखी के वेश तो मतलब इन सबकी पोल खुल सकती है, केवल वस्त्र उतारने मात्र से ही पता चल जाएगा कि सखी है कि नहीं। तो इस तरह से कई संप्रदाय बहुत सारे जो है फैले हुए थे और अभी भी हैं बंगाल और उड़ीसा में, यहाँ तक कि दुमराखी की बात है हरिदास ठाकुर की समाधि में भी जगन्नाथपुरी में अब संप्रदाय का ही मंत्र वहां पर चलता है। तो ये बड़ी दुखी बात है। हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम, भजो निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, नहीं बनेगा इससे काम। तो ये सब अपर संप्रदाय के मंत्र हैं और इससे कोई विशेष फल नहीं प्राप्त होता है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश की अवज्ञा उल्लंघन होता है इससे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों ठाकुर के द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाह रहे थे, अपने धाम को प्रकट करना चाह रहे थे। गौर नाम, गौर धाम और घोर काम, ये तीन चीजें भक्तों ठाकुर ने क्या पता लगाया, गौर काम गौरंग महापुरुष की इच्छा क्या है इसको स्थापित किया, गौरंग महापुरुष के नाम का प्रचार प्रसार किया और गौरंग महापुरुष के धाम को प्रकट किया। तो गौर नाम, गौर काम और गौर धाम, तो ये सब भक्तों ठाकुर के द्वारा जो है पता लगाया गया था। तो भक्त ठाकुर का आविर्भाव ऊला नगर, ऊला ऊला ग्राम कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है, ऊला ग्राम वीर नगर के नाम से आजकल जाना जाता है। तो ये स्थान है जहां पर भक्त ठाकुर का जन्म स्थान है, आविर्भाव का स्थान है। 2 सितंबर 1838 प्रातःकाल 7:05 और रविवार का दिन था। जो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं बर्थ चार्ट बनाने में वो नोट कर सकते हैं और उनका बर्थ चार्ट चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 सितंबर 1838 संडे का दिन प्रातःकाल 7:05 पे भक्तों ठाकुर का आविर्भाव। ये जो महाराचार्य हैं शिल भक्तों ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये हमारे शिल प्रभुपाल, इनकी जन्मपत्री बड़े ही अद्भुत है। और यहाँ तक कि भक्ति विकास महाराज ने बताया अपने पुस्तक भक्ति सिद्धांत वाणी वैभव, भक्ति सिद्धांत वैभव, तो इसमें बताया है कि तो इस पुस्तक में भक्ति विकास महाराज श्री सोलन भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे हैं कि इनकी जन्मपत्री ऐसी है कि ये इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं कि इनकी आज्ञा का पालन होके ही रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका यश फैलता रहेगा। और इनके अगर अपने शिष्य नहीं करेंगे आज्ञा का पालन तो कोई और करेगा, लेकिन इस जो इस इच्छा से आए थे वो सारी इनकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर की भविष्यवाणी दिन प्रतिदिन सच होती जा रही है, भक्ति ठाकुर की भविष्यवाणी दिन प्रतिदिन सच होती जा रही है। और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने आचार्यों की इच्छाओं को पूरा किया है और भविष्य में इनका यश दिन प्रतिदिन फैलता जाएगा। तो प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि मैं इससे अधिक क्या कर सकता हूँ, मेरे और क्या योग्यता है, मैं तो इन भक्तों को भक्तों ठाकुर के चरणों में लेके आ सकता हूँ, यही मेरी योग्यता है। यानी कि उद्धार करने वाले तो भक्तों ठाकुर हैं। तो ये प्रभुपाद जी की विनम्रता थी और प्रभुपाद जी ने भक्तों ठाकुर की इच्छाओं को सच किया। 7 साल की उम्र में ही भक्त ठाकुर, अभी उनके थोड़ा सा जीवन चरित्र के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो वास्तव में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वैसे बताया है कि जो भक्तों ठाकुर के द्वारा जो स्वलिखित जीवनी उनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है स्टोरी, लेकिन क्या अधिक महत्वपूर्ण है, भक्तों ठाकुर ने जो महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण। कहाँ वो पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े, कितने भाई थे, ये सब एक्सटर्नल जो है एक्सप्लेनेशन होते हैं किसी आचार्य के। आचार्यों का जो मूल उद्देश्य होता आने का, यानी कि महाप्रभु की इच्छा को जो पूरा करने के लिए उद्देश्य से आए आचार्य, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए। बाकी फिर भी जानकारी के लिए हम बताएंगे आपको स्वलिखित जीवनी में भक्त ठाकुर ने स्वयं अपने जीवन के बारे में अपने सुपुत्र ललिता प्रसाद ठाकुर के अनुग्रह से अनुरोध से जो है भक्तों ठाकुर ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो उसमें लिखा है कि 7 साल की उम्र में ही भक्तों ठाकुर उन्होंने बंगाली भाषा और गणित भाषा मैथमेटिक्स में दक्षता प्राप्त कर ली थी और उसमें बहुत एक्सपर्ट हो गए थे। और फिर लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके मामा और उनके बड़े भाई दोनों की ही मृत्यु हो गई। मेटर अंकल और उनके जो एल्डर ब्रदर थे उन दोनों की मृत्यु हो गई और आने वाले साल में उनके 2 छोटे भाई उनकी भी मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई 11 वर्ष की उम्र। यानी इतने सब लोगों की जब मृत्यु हो गई भक्तिनाथ ठाकुर सोचने लगे कि ये जीवन क्या है, किस तरह का जीवन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दिस इज, कि कुछ समय के लोग जीते हैं और आपस में रिश्ता स्थापित संबंध स्थापित करते हैं और कुछ समय के बाद शरीर छोड़ देते हैं, तो ये कैसा जीवन है। भक्तिनाथ ठाकुर के हृदय में इस प्रकार की आध्यात्मिक इच्छाएं प्रारंभ हो गई थी। इतनी छोटी उम्र में ही 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था एक 5 साल की कन्या से। उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में, विशेष बिहार में भी बाल विवाह बड़ा प्रचलित है और प्राचीन समय में तो बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। इससे क्या है कि स्त्रियां जो है वो सुरक्षित रहती थी। आजकल जैसे नहीं 20-22 साल में भी लोग घूम रहे हैं, बच्चे हमारे घूम रहे हैं और कन्याएं घूम रही हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में और वहां पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, तो कन्याओं का विवाह ही बचपन में ही हो जाता था। इससे उनके माता पिता भी सुरक्षित हो जाते थे कि हमारे कन्या का विवाह हो चुका है और कन्या के चेतना में भी बात प्रवेश कर जाती थी। साइकोलॉजिकली भी उस कन्या को जो है इस बात का विश्वास हो जाता था कि हाँ ये मेरे पति हैं, तो और कहीं कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और विवाह अधिकांश विवाह होते थे अरेंज मैरिज होता था, है ना, प्रेम विवाह करके कुछ था नहीं उस समय, बहुत कम मात्रा में। तो इस प्रकार 18 साल की उम्र में उन्होंने एक पोयम लिखा 2 वॉल्यूम्स में और ये पोयम जो कविता बहुत प्रचलित हुई और इस तरह से उन्होंने कॉलेज में अपना समय बिताया। वैसे स्कूल में एक स्कूल था हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्कूल, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उनको मेडल भी मिला, गोल्ड मेडल भी मिला। और उसके बाद फिर कॉलेज में जो है उन्होंने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया, बाइबल भी पढ़ा उन्होंने, कुरान भी पढ़ा और ये सब ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया। और उसके बाद कॉलेज में ये बहुत बड़े तर्कशास्त्री भी बने, ही वॉज अ ग्रेट डिबेटर एंड लॉजिशियन, तर्कशास्त्री और विवादी, डिबेटर को हिंदी में विवादी कहते हैं और लॉजिशियन को तर्कशास्त्री कहते हैं। तो दोनों ये बहुत बड़े तर्कशास्त्री और विवादी थे भक्तिनाथ ठाकुर और उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी भी आते हैं। तो प्रभुपाद जी तो कम लॉजिशियन नहीं है, तो ये सब अपने पूर्ववर्ती आचार्य जो पूर्वज हमारे उन्हीं से ही जो है लिया गया ये ज्ञान है। और 1856 में उलानगर वापस आ गए। उलानगर में क्या हुआ, हैजा फैल गया उनके गांव में, जन्म स्थान में हैजा फैल गया और उनकी बहन की मृत्यु हो गई, सिस्टर जो थी उनकी उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनकी पत्नी चले गई अपने पिता के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो छोटी थी बहुत उम्र में, तो वो अपने पिता के पास जाके रहने लगी और ये उस समय 14 वर्ष की थी उनकी पत्नी जो है। और इसके बाद भक्तिनाथ ठाकुर का जो जन्म का नाम था केदारनाथ दत्त। और भक्तिनाथ ठाकुर इस तरह से अपने माता के साथ और नानी के साथ कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता में रहने लगे और यहाँ पर उसी स्कूल में जहाँ वो पढ़े थे बचपन में आके, उसी स्कूल में आके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्कूल। और उस समय उनकी जो उनकी आय थी, उनकी इनकम थी, मंथली सैलरी जानते कितनी थी उस समय, 15 रुपये। 15 रुपये में तो आजकल एक बोतल मिलता है मिनरल वाटर, वो भी 20 रुपये अगर 2 लीटर लेते हैं, नहीं 1 लीटर 20 रुपये हो गया, अरे वाह बहुत महंगा है। उस समय मंथली सैलरी था 15 रुपीज, सोच के देखिए आप, तो अब तो आप जी भी नहीं सकते हैं। और लेकिन घर का जो खर्चा है नहीं निकल पा रहा था, उनकी माता ने सोने का चेन बेचा यहाँ तक कि घर का किराया देने के लिए। और 1856 में वो अपने दादाजी से मिलने गए, पूर्वज बड़े वैष्णव रहे हैं इनके पूर्वज भी, और यहाँ तक कि जो नरोत्तम दास ठाकुर के जो पिता थे राजा कृष्णानंद, उन तक इनका जो वंश जाता है भक्तिनाथ ठाकुर का। तो भक्त ठाकुर के जो दादाजी थे भी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, और जब भक्त ठाकुर से मिलने गए तो सुबह से रात तक निरंतर वो हरिनाम लेते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निरंतर वो हरिनाम ले रहे थे। और भक्त ठाकुर को देखकर उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि 27 वर्ष तक आप जो कुछ करेंगे वही आपका जो है नित्य कर्म होगा, दैट विल बी योर परमानेंट ऑक्यूपेशन। 27 तक जो आपने अचीव कर लिया उसके बाद वही ऑक्यूपेशन आपके लिए जो है परमानेंट होगा, यानी कि उसी पे आप आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद आप बहुत उच्च कोटि के वैश्य बनेंगे, और मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है आपको। इस तरह से कहते हुए उनके दादाजी ने शरीर छोड़ा और ब्रह्मरंध्र से यहां से उन्होंने प्राण त्यागे। बड़ा ही अनयूजुअल था ये सीन देखने के लिए कि कोई यहां से प्राण छोड़ रहा है। जल्दी प्राण कैसे छोड़ते हैं, पापी लोग कहां से प्राण छोड़ते जाते हैं आप, नीचे से, तो जहां जहां से ये होल्स है, नौ छिद्र है, वहीं से प्राण बाहर निकलते हैं, प्राण यहां से नहीं निकलेगा। प्राण तो कहां से निकलता है, 9 होल से निकलता है। तो बेसिकली पापी जो लोग होते हैं वो नीचे से प्राण त्यागते हैं, और जो योगी होते हैं और जो पुण्य आत्माएं होते हैं वो ऊपर से मुंह त्याग, ऊपर से प्राण त्यागते हैं, आंखों से प्राण त्यागते हैं, नासिका से प्राण त्यागते हैं, या मुंह से प्राण त्यागते हैं। लेकिन ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागना ये बहुत ही उच्च कोटि का जो है प्राण त्यागना होता है। और जनरली जो योगीज होते हैं जो ऊंचे लोगों में जा रहे हैं, बहुत हायर प्लैनेट्स में जा रहे हैं, वो इस ब्रह्मरंध्र से यहाँ से जो है प्राण त्यागते हैं। उनके दादाजी ने इस तरह से प्राण त्यागा था, भक्त ठाकुर के जो दादाजी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और माता को, वो दोनों को कटक लेके गए उड़ीसा, और वहाँ पे वो 6 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, और वहाँ पे उनकी जो सालाना नहीं मंथली जो इनकम था उनका 20 रुपये था, तो 15 रुपये से अब क्या हो गया, 20 रुपये हो गया। 1860 में यह बता रहे हैं कि वो भद्रक गए, और वहाँ पे भी उनको एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ, और वहाँ पे उनका जो इनकम हो गया, मंथली सैलरी हो गया 45 रुपये। अब वो हेडमास्टर बन गए थे, यानी कि एक तरह से प्रिंसिपल के पद पर थे, और 45 रुपये उनका इनकम था, सोच के देखिए इंक्रीमेंट हो गया। और उसके बाद फिर वो मिदनापुर एक स्थान में गए, और वहाँ पे भी उनको ऊंचा पद प्राप्त हुआ, और वहाँ उनकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि वो श्री चैतन्य चरितामृत पढ़े, वहाँ उनकी इच्छा हुई। तो वहाँ एक जाति वैश्य पंडित थे, उन्होंने बताया चैतन्य चरितामृत के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि चैतन्य महाप्रभु जो है एक बहुत बड़े विद्वान पंडित भी थे, और साथ में उन्होंने पूरे बंगाल में धर्म का प्रचार किया, और उनके इतिहास के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में ये सब जानकारी उपलब्ध होती है चैतन्य चरितामृत में। लेकिन चैतन्य चरितामृत का उस समय जो प्रिंट है वो अवेलेबल नहीं था, मिल नहीं रहा था कहीं, और इस तरह भक्ति ठाकुर लगातार ढूंढते रहे कि कहाँ ये मिलेगा। और कुछ समय बाद 1861 में, और उनकी संतान थी 10 महीना हुआ था भक्ति ठाकुर की, वैसे तो 14 संतानें थी, 14 चिल्ड्रन, उसमें 8 जो है पुत्र थे और 6 कन्याएं थे, और एक जो संतान थी वो बचपन में उसकी मृत्यु हो गई, ये जो बताया पहली पत्नी से। और क्योंकि पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, 10 महीने जब हुए थे बच्चे को, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, तो इस कारण से उनकी जो माँ थी, भक्त ठाकुर की माँ थी, वो भी वृद्ध हो चुकी थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि बच्चे को कैसे पालें, तो इस कारण से भक्त ठाकुर को दूसरा विवाह करना पड़ा था। और भक्त ठाकुर ने 2 महीने के उपरांत विवाह किया था भागवती देवी से, तो बहुत उच्च कोटि की वैश्य भागवती देवी, इतनी दक्ष थी परिवार चलाने में कि भक्त ठाकुर को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी, इसलिए महापुरुषों के आंदोलन को स्थापना करने के लिए उनको घर में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था, तो ये सारे संतानों की देखभाल स्वयं भागवती देवी कर लेती थी। तो इस तरह से ये उनका प्रयास जारी रहा और ग्रंथ की तलाश करते रहे। 1863 में 2 कविताएं और प्रकाशित किया उन्होंने, कैलकाटा रिव्यू में भी इसका ये पब्लिश हुआ था और बहुत प्रचलित हुआ था। उसके अलावा वो हाई कोर्ट यानी कि जज में, जज के क्लर्क बने, हेड क्लर्क बने, और इस समय उनकी सैलरी और बढ़ गई, 150 रुपया हो गई महीने, कहां 15 रुपया और कहां 150 रुपया, यहां तक कि 1974 में भी अधिकांश लोगों की जो आयु मतलब आय थी उस समय 250 रुपया 450 रुपये, नहीं उस समय तो इतना ही सैलरी होता था 74, मगर किसी को 1100-1000 रुपये मिलता था तो बहुत बड़ी सैलरी माने। हमने भी जब पहली बार जॉब किया था 88-89 में तो उस समय हमारी भी सैलरी बहुत कम थी। तो इस तरह से उस समय लोग सैलरी इतनी नहीं थी क्योंकि खर्चे बड़े कम थे, सब कुछ सस्ता था और एक एक रुपये में चावल की पूरी बोरी आ जाती थी उस जमाने में। अब तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 150 रुपये की सैलरी थी और 150 रुपये में पूरा घर बड़ा आराम से चलता था उनका। ना ही वजह थी, मैं बड़ा अच्छा फैमिली चला रहे थे, यानी कि 13 संतानों का लालन पालन करना 150 रुपये में हो जाता था, कहने का मतलब ये है। और ये सारी जो संतानें थी भक्ति उठाओ की, सारे के सारे वैष्णव थे, सारे के सारे वैष्णव थे। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद 1866 में उनको बहुत अच्छा पद प्राप्त हुआ, स्पेशल डेप्टी रजिस्ट्रार फॉर एश्योरेंसेस, यानी ऑफ एश्योरेंसेस, यानी डेप्टी मैजिस्ट्रेट का पावर उनको मिला था 1866 में। और उस समय उनकी उम्र 27 साल की थी, जैसे उनके दादाजी ने भविष्यवाणी की थी, तो 27 साल की उम्र तक जो है आपको ऊंचा पोजीशन मिल जाएगा और उसी पोजीशन में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद भक्त ठाकुर वृंदावन गए और तीर्थ यात्रा में गए, मथुरा, काशी और कई और तीर्थ स्थान, प्रयाग, इलाहाबाद इत्यादि। और 8 वर्ष के बाद 1866 में भक्ति ठाकुर को चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्राप्त हुआ दीनजपुर में, बंगाली में इसका वर्षन मिला, और जहां पे पहली बार भक्ति ठाकुर को डेप्टी मैजिस्ट्रेट के पोस्ट में अपॉइंट किया गया था। तो डेप्टी मैजिस्ट्रेट के पोस्ट में अपॉइंट किया गया था। और उसके बाद भक्ति ठाकुर ने जब ग्रंथ पढ़ा चैतन्य चरितामृत, तो पहले रीडिंग में उनको ऐसा लगा कि चैतन्य चरितामृत के, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई है। और दूसरी बार चैतन्य चरितामृत जब पढ़ा तो उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, लेकिन उनको एक शंका हुई कि क्या कारण है कि चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े विद्वान हैं लेकिन कृष्ण जैसे लंपट के बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा की है, उनके बारे में व्याख्या की है और सलाह दी है कि हम कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण की भक्ति करें, तो लेकिन कृष्ण तो लंपट है और उनके लंपट जैसे चरित्र का गुणगान क्यों किया है श्री चैतन्य महाप्रभु। लंपट मतलब डिबॉची, एक पावर कैरेक्टर जो है भगवान श्री कृष्ण का, कि इतने सारे गोपियों के साथ महाराज करते हैं, तो इसका गुणगान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्यों किया है। लेकिन कुछ समय के बाद परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे वो समझ गए कि कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है, जो तत्व है, कृष्ण का तत्व है, वो बहुत गहरा है, बहुत डीप है ये ट्रांसेंडेंटल साइंस। तो धीरे धीरे उन्होंने अप्रिशिएट किया और कुछ समय के बाद ही उन्होंने स्वीकार किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। वास्तव में भक्तिनो ठाकुर तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, नित्य सिद्ध परिकर है भगवान के, लेकिन इस तरह का आचरण दिखाते हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से सामान्य लोगों के बीचों में रहकर ऐसे वैष्णव आचार्य जो है धर्म का प्रचार करते, ऐसा क्यों करते हैं वैष्णव आचार्य। उसका रीजन ये है, अगर वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में आचरण करेंगे यहां पर तो हम में से कोई भी उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहेगा, उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहेगा। जैसे कि वंशीदास बाबा जी महाराज को ले लीजिए, वंशीदास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार वो परमहंस वैष्णव थे, लेकिन उन्हें जीवन भर स्नान नहीं किया, विश्वास करेंगे आप? लेकिन वो परमहंस वैष्णव थे, भक्ति सिद्धांत महाराज ने शिष्यों को उनके पास भेजते थे उनसे शिक्षा लेने के लिए। श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज पब्लिक लैट्रिन में बैठकर हरिनाम का उच्चारण करते थे, कैसे आप रिलेट करेंगे उनके साथ। इसलिए जो महान आचार्य हैं कृपा वर्ष करुणा दिखाते हुए, दया दिखाते हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, संन्यास आश्रम में रहते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। और कुछ समय के बाद भक्तिनो ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा है, एक पुस्तक लिखी, कविता लिखी, सच्चिदानंद प्रेमालंकार। तो ये जब कविता लिखी तो इतनी प्रचलित हो गई और तब से उनका नाम पड़ गया सच्चिदानंद। भक्तिनो जो है टाइटल बाद में मिला उनको, पहले उनका टाइटल क्या पड़ा, सच्चिदानंद। 1869 में उन्होंने दीनजपुर में बहुत सुंदर प्रवचन दिया, जिसमें बहुत बड़े बड़े धर्म के प्रचारक और विद्वान वो सब वहां मौजूद थे और कई अंग्रेज भी वहां पर आए थे। और वहां उस भाषण के बाद वो पुस्तक के रूप में वो प्रकट हो गई, पब्लिश हो गई, और पुस्तक का नाम था भागवत इट्स फिलॉसफी इट्स एथिक्स एंड इट्स थियोलॉजी। भक्ति ठाकुर शैल भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के जो ओरिजिनल बुक्स पढ़ेंगे आप इंग्लिश में, उसको पढ़ने के बाद बड़ा मुश्किल होगा समझना। प्रभुपाद जी की कृपा है कि इन सिद्धांतों को और पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को इतनी सरल भाषा में प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद ने एक्चुअली स्पून फीडिंग किया हमें, तब जाके हम भक्त बन पाए। इन आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ेंगे सीधा समझना बड़ा मुश्किल, बहुत ही कठिन है। और उसके बाद बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े धर्म के जो ग्रंथ है, जैसे बाइबल है, कुरान है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। 1871 में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर उन्होंने गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया। जो गोस्वामी ग्रंथ है षट संदर्भ है और कई ऐसे ग्रंथ हैं, 6 गोस्वामियों के, रूप गोस्वामी पाद जी के, सनातन गोस्वामी के, जीव गोस्वामी के, इन सब के ग्रंथों के जो है ग्रंथों का अध्ययन किया श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने। और वहां पे जगन्नाथपुरी में 1871 में भक्तिनाथ ठाकुर को चीफ मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसी भारतीय को सबसे ऊंचा पद अगर दिया जाता था सरकार में तो यही था, अगर इससे ऊंचा पद किसी को नहीं मिलता था। और भक्तिनाथ ठाकुर बहुत फेमस थे, जज थे, जो कई साल की जो समस्याओं को कुछ ही घंटों में और कुछ ही दिनों में सुलझा देते थे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रभावित थे भक्तिनाथ ठाकुर से, उनके जजमेंट से और उनके जजमेंट के एक्सपर्टीज से। और उन्होंने 2 कविताएं लिखी वहां पर हरिदास ठाकुर की समाधि में, आज भी वो कविता का एक भाग जो है वहां पब्लिश है, इम्प्रिंटेड है वहां पे मार्बल प्लेक में, वहां पे इम्प्रिंट किया हुआ है हरिदास ठाकुर की समाधि में। और ये पोयम के जो बोल इस तरह से है, ही रीजन सेल हु टेल्स दैट वैष्णवास डाइड व्हेन दो आर्ट लिविंग स्टिल इन साउंड, वैष्णवास डाइड टू लिव एंड लिविंग ट्राइंग टू स्प्रेड होली नेम अराउंड, ही रीजन इल हु टेल्स दैट वैष्णवास डाइड। यार अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं होगा उस व्यक्ति के साथ जो ये कहते हैं कि वैष्णव मर गए हैं, क्योंकि वैष्णव तो when you are living still around in sound, आप अभी भी रह रहे हैं किसमें, शब्द ध्वनि के द्वारा, वाणी के द्वारा। वैष्णव आर डाई टू लिव, वैष्णव मरते हैं जीने के लिए, एंड लिविंग ट्राई टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड, और जीते किस लिए है, हरि नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर की समाधि में याद भी वहां प्लेक में इम्प्रिंट किया गया है। दूसरा पॉइंट उन्हें सारग्राही वैष्णव, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सेंस प्लेजर के जो मेटीरियल एस्पिरेशन है, एस्पिरेशंस है, उसकी जो फ्यूटिलिटी है, यानी कि जब कोई इंद्र तिथि में लगता है उससे और हताश हो जाता है, तो उसके बारे में उन्होंने एक कविता लिखी। और आध्यात्मिक जगत में किस तरह से एक आत्मा प्रवेश करती है इसके बारे में उन्होंने लिखा। There rests my soul from matter free upon my lover's arms. There rests my soul from matter free. Matter free मतलब भौतिक जगत से मुक्त हो गए और अब मेरी आत्मा वहां पर जाके वास कर रही है। Upon my lover's arm. Lover's arm कौन? कृष्ण। कृष्ण मेरे प्रेमी हैं। उनके arms में, उनकी भुजाओं में मैं जो है वहां पे विश्राम कर रहा हूं। Eternal peace and spirit's love are all my chanting chants. तो इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि कैसे धाम में जाकर शाश्वत रूप से शाश्वत शांति की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और कृष्ण के साथ निवास कर रहे हैं। द सेम ईयर, उसी समय उसी वर्ष उन्होंने एक और एक का प्रबंध, क्या कहते हैं उसको, निबंध लिखा, ऐसे लिखा उन्होंने, टू लव गॉड, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट के तो बाइबल में जो कमांडमेंट्स दिए हुए हैं उसके लिए एक वैष्णव विचारधारा उन्होंने प्रस्तुत की, उसका एक वैष्णव विजन प्रस्तुत किया और लिखा, लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल दाई स्ट्रेंथ एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। लव द लॉर्ड दाई गॉड, दाई का मतलब ये बेसिकली ट्रेडिशनल इंग्लिश है, जो ओरिजिनली इंग्लिश था उसमें इस प्रकार के वर्ड्स यूज किए जाते थे प्राचीन समय में। दाई का मतलब योर, लव द लॉर्ड दाई गॉड, योर गॉड विथ ऑल दाई स्ट्रेंथ, दाई स्ट्रेंथ मतलब विथ योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति के द्वारा, पूरी क्षमता के द्वारा भगवान से प्रेम करो, एंड लव दाई नेबर अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एंड दाई योर सेल्फ जिस तरह से आप अपने से प्रेम करते हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जिस तरह से आप खुद को प्रेम करते हो उस तरह से पड़ोसी को प्रेम करो। तो इस तरह से हमने कहा कि यही तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेव। तो इस तरह से भक्त ठाकुर ने इसकी वैष्णव विचारधारा प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि वैष्णव विचारधारा से बिल्कुल मिलता जुलता है ये 10 कमांडमेंट्स। और चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में क्या किया है, जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को ही आगे स्थापित किया है, उसका ही प्रचार प्रसार किया है। तो इस तरह से भक्त ठाकुर ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और उस समय के बाद भक्त ठाकुर को जगन्नाथ टेम्पल का भी इंचार्ज बना दिया, बनाया गया, वहां का मैनेजर बनाया गया और जगन्नाथ टेम्पल उनके अंडर था। और क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी समस्या हो गई थी, ठीक से भोग नहीं लगता था, टाइम पे भोग नहीं लगता था और छप्पन भोग भी लगता नहीं था और कई वहां पे मिस अप्रोप्रिएट हो रहे थे, धन काफी धन का घोटाला भी हो रहा था। तो भक्त ठाकुर ने सबको नियंत्रित किया और उसके बाद जगन्नाथ जी की सेवा ठीक सुचारू रूप से होने लगी। और इसी समय भक्त ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। और घटनाएं किस तरह की होती थी कि तरह तरह के आप संप्रदाय के लोग वहां मौज जो है प्रचार प्रसार करने लगे और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि ये जो आप संप्रदाय के लोग थे ये वास्तव में देखने में तो लगते थे वैष्णव, लेकिन वैष्णव होते नहीं थे। भक्त ठाकुर ने एक कविता लिखी है, गीत लिखा है, जिसका नाम है बाउल संगीत, सॉन्ग ऑफ द मैड मैन। तो क्या लिखा है इसमें, ए तो एको कोलीर चेला माथे नेड़ा कोपनी पेड़ा तिलक लाके घलाए माला देखते वैष्णव माता आश्रो शक्त काजे बेला सहज भजन कुरछे ना मामू संगे लोए परेर बाला शकी भावे भजने तारे निजे हुए नंद लाला कृष्णदासे कथार चले महाजन के दिच्छेन शला शला। तो क्या लिखा है इसमें भक्ति ठाकुर ने, नवरसिक आपने मानी खाचने आवार मन कोला बाउल बोले दोहाए ओ भाई दूर कोरो ए लीला खेला। तो बाउल अपने आप को यहां भक्ति ठाकुर अपने को बाउल बता रहे हैं, सॉन्ग ऑफ द मैड मैन। तो बाउल मतलब अवधूत परमहंस वैष्णव जो होते हैं जो कृष्ण प्रेम में पागल हो चुके हैं जनरली, ले बाउल संप्रदाय नहीं, अउल बाउल तो ही आप संप्रदाय थे जो दिखावा करते थे पागल होने का, लेकिन होते नहीं थे एक्चुअली, वो मटेरियली मेंटली पागल होते थे फिजिकल लेवल पर, लेकिन भक्त ठाकुर प्रेम में पागल है। और लिख रहे हैं हियर इज जस्ट अनदर डिसाइपल ऑफ कलयुग, भक्त ठाकुर बता रहे देखो ये कली का एक चेला है, अपने केश मुंडित रखता है, अपना केश मुंडित रखता है और कोपिन धारण करता है, नाक में तिलक लगाता है, कंठी माला उसने पहनी हुई है लेकिन कली का चेला। और वैष्णव देखने में वैष्णव दिखता है लेकिन वास्तव उसका आचरण तो शक्ता जैसा है, शक्ता मतलब देवी का भक्त लगता है देखने में, तो वैष्णव लगता है लेकिन है देवी का भक्त उपासक। और क्यों करता है दुर्गा जी को उपासना क्यों करता है, उन्हीं का ही उपभोग करने के लिए, उनकी उपासना करता है, उन्हीं को एंजॉय करने के लिए। और सहज भजन में लगता है और क्या करता है, दूसरों को अपना क्या बताता है, मामा बताता है। और मामा बता के क्या करता है, ऐसी स्त्रियों से ऐसे कन्याओं से उनके साथ अवैध संबंध रखता है और इन कन्याओं को सखी मानता है, ये राधारानी की सखियां हैं। और बोलता है कि ये इनका संबंध नंद महाराज के पुत्र से है और इस तरह से धोखा देने की प्रवृत्ति से वो भाषण देता है और कहता है कि हर व्यक्ति जो है कृष्ण का दास है और ये जो कली का चेला है वो वास्तव में क्या करता है, भक्तों को कष्ट पहुंचाता है और इस तरह से नवरसिकों को क्या करता है, आदर सम्मान देता है और उसके बाद क्या करता है, उनके साथ बैठकर उनके साथ मनोकल्पना करता है। चाउंड बाउल कहता है, यानी कि भक्त ठाकुर मेले कहते हैं, चांद बाउल कहता है कि हे प्रिय भाइयों, ऐसे जो सहिजा लोग हैं जो वास्तव में इस तरह से भाव प्रस्तुत करते हैं रसिकों का, इनसे बच के रहो। तो भक्त ठाकुर इस तरह से इन भजनों के द्वारा, वास्तव में जो भक्त ठाकुर ने लगभग 100 ग्रंथ लिखे हैं और भजनों के द्वारा भक्त ठाकुर ने हमारे पूरे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। इसलिए कोई अगर ग्रंथ ना भी पढ़े केवल इन भजनों को याद कर ले तो उसको पूरा वैष्णव सिद्धांत पता चल जाएगा। ये भक्त ठाकुर की दक्षता है कि पूरा भक्ति रसामृत सिंधु या पूरा रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित जो उलझल मिलिनमणि है उन सभी गौड़ियावश्य सिद्धांतों को श्री भक्ति ठाकुर ने भजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक समय की बात है कि क्या हुआ कि मिस्टर रॉबिन शॉ जो कि कमिश्नर थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, उनके बाद बहुत सारे कंप्लेंट्स आए और ने कहा कि वहां पर ओडिशा के जंगलों में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, अब संप्रदाय के लोग आ गए हैं जो कई लोगों की कन्याओं के साथ अवैध संबंध रखते हैं, तथाकथित रासलीला करते हैं और कहते हैं कि वह महाप्रभु के संप्रदाय में है और यहां तक ही कहते हैं कि वो महाविष्णु के अवतार है, भगवान के अवतार है। तो इस तरह का वहां पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और भक्तिनाथ ठाकुर को नियुक्त किया गया था बेसिकली इस केस को डील करने के लिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर जब सूर्यास्त हुआ कुछ कॉन्स्टेबल्स के साथ और पुलिस के साथ जंगल में प्रवेश किए और जंगल में बिश के शेन को देखने गए थे। बिश के शेन नाम का व्यक्ति था जो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बताता था और जब वहां गए तो ये शरदायपुर नाम का गांव था, उस गांव के नजदीक ये जंगल था और जंगल में जब पहुंचे तो भक्तिनाथ ठाकुर देखकर वो योगी जा हुआ खड़ा हो गया। उसने कहा कि हाँ केदारनाथ दत्त आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि ये जो योगी था वो देख लेता था, चेहरा देखकर पहचान लेता था कि कौन किस उद्देश्य से आया है। तो उसने कहा, योगी ने कहा, मैं जानता हूं तुम मैजिस्ट्रेट हो और तुम बंगाली हो, लेकिन तुम इतनी रात में यहां पर क्यों आए हो? तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं तुम्हें मिलने आया हूं, तुमसे मिलने आया, तुम्हें देखने आया। तो विश्वेश्वर ने कहा कि देखो बैठ जाओ और मेरी शिक्षाओं को सुनो, अगर तुम उससे मिलने आए तो सुनो कुछ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। सुनो, मैं हूं महाविष्णु और क्षीर सागर से मैं प्रकट हुआ हूं इस स्थान में और जल्दी मैं इन अंग्रेजों को नष्ट कर दूंगा, उनको खत्म कर दूंगा। यहां देखिए जो अंग्रेजों का राजा है इंग्लैंड में उसको भी मैं खत्म कर दूंगा, ये मैं हर जगह में ये घोषणा कर रहा हूं। तो उसके बाद भक्त ठाकुर लिखते हैं कि बिश्केशेन ने क्या किया, बिश्केशेन ने भक्तिनाथ ठाकुर को एक ताल का पत्ता दिया और उसमें यही भाव उसने कविता के रूप में प्रस्तुत किया कि किस तरह से वो जल्द ही जो है इन अंग्रेजों को जो है समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर को देखकर बिश्केशेन ने बोला, नाम बताया भक्तिनाथ ठाकुर का कि आपका नाम केदारनाथ है, आपका क्या आंदोलन है और आप किस उद्देश्य से यहां पर आए हो, मैं सब जानता हूं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने देखा इसको बहुत कुछ पता है, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर उसके इस हिंदी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए कि वो मन को पढ़ पा रहा है, क्योंकि वास्तव माइंड को रीड करना ये बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। कोई थोड़ा सा भी अगर सत्वगुण में आने लगता है, आप में भी कोई भी अगर सत्वगुण में आने लग जाएगा तो आप भी मन को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी सिद्धि नहीं मानी जाती है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर को खास इंप्रेस नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप महाविष्णु हो तो यार जंगल में क्या कर रहे हो, अभी जंगल में क्या कर रहे हो, आपको तो पुरी में होना चाहिए जगन्नाथ मंदिर में, यहां क्या कर रहे हैं आप? तो योगी ने हंसते हुए बोला, मैं वास्तव में परम भगवान, स्वयं परम भगवान, और वहां पे पुरी में वहां पे भगवान नहीं है, वो तो लकड़ी है, वो जगन्नाथ तो लकड़ी है और वो चैतन्य है, वो मेरा भक्त है और मैं इस भारत को दोबारा हिंदुओं का स्थान बना दूंगा, यहां पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होगा। मैं अभी जंगल में रह रहा हूं, सुवन में रह रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप बहुत दक्ष जज हो, बहुत एक्सलेंट जज हो और बहुत बड़े भक्त भी हो, चिंता ना करो, देखना अंग्रेजों का राज्य जब समाप्त होगा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऊंचा पद दूंगा, तुम्हें गवर्नर बनाऊंगा पूरे उड़ीसा का, तुम चिंता मत करो। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने गंभीरता से उत्तर दिया, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, बड़े बड़े राक्षस रावण हिरण्यकश्यपु कंस शिशुपाल ये सभी भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, सबके सब मारे गए मच्छर की तरह, तो तुम क्या हो उनके सामने? तो योगी जो है वो बहुत प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा था, भक्तिनाथ ठाकुर के ऊपर इंप्रेस करने का प्रयास कर रहा था और फिर भक्तिनाथ ठाकुर के सामने कई बीमारियां ठीक करनी शुरू कर दी और यहां तक कि क्या करने लगा, आंख के भीतर जाता था और आंख से बाहर वापस आ जाता था, तो तरह तरह की वो कलाएं दिखा रहा था, सिद्धियां दिखा रहा था, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यहां तक कि कई लोगों को जो चोट लगी होती थी, गहरा जख्म होता था, उसमें कोई राख लगाता था, वो सिद्धि के द्वारा उन जख्मों को भी वो ठीक कर देता था। तो ये देखकर भी भक्तिनाथ ठाकुर के ऊपर कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ रहा था। तो भक्तिनाथ ठाकुर उस समय अगले दिन आसपास के गांव में भी गए और जाके और लोगों से भी पता किया इस योगी के बारे में, कई लोगों ने प्रशंसा की, कई लोगों ने बहुत कंप्लेंट किया कि ये क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसका आचरण ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया, पुलिस वालों को इकट्ठा किया और वहां पे दो पुलिस इंस्पेक्टर्स को लेके आए और एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेके आए और करीब 72 पुलिस 72 पुलिस मैन वहां पर लेके आए इसको अरेस्ट करने के लिए, उस योगी को बेश कैसे अरेस्ट करें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भक्त जो है ऐसे वैष्णवाचार्य ऐसा नहीं कि केवल माला ही करते और कुछ कर नहीं सकते हैं। भक्ति ठाकुर जैसे वैष्णवाचार्य हैं, कोई भी असंभव कार्य वो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे प्रभुपाल से उनके शिष्य ने कहा कि प्रभुपाल भक्ति ठाकुर इतने पावरफुल वैष्णव थे, उन्होंने क्यों ये कार्य नहीं किया? तो प्रभुपाल ने कहा वो तो वैष्णव ही इज ऑल पावरफुल, वो चाहते तो तुरंत कर सकते थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए कार्य छोड़ा है तो हमें ये श्रेय लेना चाहिए, अभी ये उनकी कृपा से हम लोग ये कार्य कर पाएंगे। तो इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो जब अलग अलग गांव में गए तो इस प्रकार से जब उनको मिला तो पुलिस वालों को लेके आए और वहां पे विश्वकेशन जो है यज्ञ कर रहा था और हजारों हजारों की तादाद में बहुत सारे अनुयायी वहां पर इकट्ठे हो गए और यज्ञ में भाग ले रहे थे और अलग अलग तरह तरह के जो है वहां पर वो सिद्धियां प्रकट कर रहा था। और विश्वकेशन जो है थोड़ा घबराया तो था लेकिन बाहर से वो दिखा नहीं रहा था कि वो घबराया हुआ है। और भक्ति ठाकुर जो है वहां पहुंच गए तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि सरकार ये चाहती है कि आप जगन्नाथपुरी में आके रहे, इस जंगल में नहीं। तो उसने योगी ने कहा कि कौन है ये गवर्नर? मैं हूं भगवान और मैं चाहूं तो एक ही चुटकी में उस पुष्टि पूरे सृष्टि को जला कर राख कर सकता हूं। तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि आप शांतिपूर्वक नहीं जाएंगे हमारे साथ तो फिर आपको जबरदस्ती हम लेके जाएंगे। कहा कि जबरदस्ती हमको उठा के ले जाना पड़ेगा हमें। तो बोलता ठीक है वैसे ये भी मेरी कृपा है, मुझे तुम लेके नहीं जा सकते हो लेकिन भक्त अगर चाहता है भगवान को ले जाना तो मैं भी दयावश तुम्हारे साथ चल पड़ता हूं। तो योगी जो है इतना अहंकार था उसको तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको पकड़ के जो है बैलगाड़ी में बिठाया और उसके बाद वो तरह तरह की सिद्धियां भी दिखाने लगा, रस्ते में तरह तरह की सिद्धियां प्रकट करने लगे लेकिन भक्ति ठाकुर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और भक्ति ठाकुर उसको लेके आए और जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद फिर जब भक्ति ठाकुर जब लेके आए तो वहां पर भक्ति ठाकुर को बार बार जो है वो धमकी दे रहा था कि मैं ऐसी आग प्रकट करूंगा और अपनी जटाओं से उसने आग भी प्रकट किया था दुर्वासा मुनि की तरह। लेकिन भक्ति ठाकुर जो है बिल्कुल भी इसे घबराए नहीं और पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। और लेकिन भक्ति ठाकुर को बार बार वो धमकी देता था कि उसने कहा कि अगर आप मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे, मुझे सजा दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से भक्ति ठाकुर ने उसको कैद किया और कई दिन तक ये चलता रहा और कई दिनों तक विश्वकेशन ने ना खाया ना कुछ सोया, लगातार 21 दिन तक वो ना खाया ना सोया। और कोर्ट में ये ट्रायल चलता गया और 18 दिन तक लगभग जो है ये वहां पे केस चलता गया। और उसके बाद इन 21 दिनों में जब पांचवा दिन आया तो पांचवा दिन तो कोर्ट एडजर्न कर दिया गया लेकिन छठे दिन क्या हुआ, विश्वकेशन जो है वो बार बार धमकी दे रहा था भक्तिनाथ ठाकुर को कि जाओ देखो अपने घर में जाके देखो क्या हो रहा है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मुझे दंडित करने की कोशिश कर रहे हो, जाओ अपने घर में जाके देखो तुम्हारे घर वालों के साथ क्या हो। तो जब भक्तिनाथ ठाकुर घर गए तो उनकी बच्ची थी कदमनी वो बीमार हो गई, बहुत बुखार हो गया लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर घबराए नहीं इससे। लेकिन सुबह होते लगभग 8 बजे के करीब कदमनी फिर से स्वस्थ हो गई और आंगन में खेलने लगी। तो उनकी लेकिन धर्मपत्नी जो थी यानी भागवती देवी वो बहुत घबरा गई थी, उन्होंने कहा कि पूरे शहर में हैजा फैल चुका है और एक स्कूल में आग लग गई है, हमारे घर में भी बच्चे जो है ये बच्ची बीमार पड़ गई, आप क्यों नहीं उस विश्वकेशन को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ दीजिए हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हम क्यों उससे दुश्मनी ले, विश्वकेशन से हम दुश्मनी ले अच्छी बात नहीं है। भक्त ठाकुर ने कहा कि लेट अस ऑल डाई बट दिस रास्कल मस्ट बी पनिश्ड। भक्त ठाकुर ने कहा कि अच्छा है कि हम तो मर जाए लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, भक्त ठाकुर ने कहा। तो भक्त ठाकुर बिल्कुल डिटरमेंट है उसको पनिशमेंट देने के लिए। पूरी जगन्नाथपुरी में वहां हर जगह जो है तहलका मच गया। और उसके बाद 17th day विश्वकेशन ने कहा देखते रहिए तुम्हारे घर में क्या हुआ है, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या हाल हुआ। लेकिन भक्त ठाकुर बिल्कुल भी घबराए नहीं। और जब घर पहुंचे भक्त ठाकुर जब घर पहुंचे तो वहां जब अपने कपड़े जब पहनने लगे थे, कपड़े उतारने लगे थे, कोर्ट से आए थे, ड्रेस चेंज करने लगे तो उनके छाती में दर्द शुरू हो गया और बहुत जबरदस्त पेन हुआ। और प्रातःकाल 10 बजे जब वो पेन थोड़ा सा कम होने लगा तब उन्हें जो है हिम्मत की कि मैं कोर्ट जाऊं। तो इस तरह से लगभग 21 दिन तक ये जो है ट्रायल चलता रहा और भक्तिवर ठाकुर बड़े हिम्मत करके पालकी में बैठकर कोर्ट में आए अपनी छाती को पकड़ते हुए। बहुत सीनियर पेन था उनको भक्तिवर ठाकुर को, और भक्तिवर ठाकुर ने आके जजमेंट दिया। भक्तिवर ठाकुर जजमेंट क्या देते हैं, बिशकेशन इज फाउंड गिल्टी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशनल इंडियन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, therefore is sentenced to 18 months of strict imprisonment and hard labor। तो बच्चन ठाकुर कहते हैं कि नेशनल ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ में बहुत गलत किया है और हम इसको सख्त सजा देते हैं, 18 महीने के धीरे इसको कैद खाने में रहना पड़ेगा और वहां पर कठोर परिश्रम उसको करना पड़ेगा। बिशकेशन को यह सजा दी, तो वहां पर बिशकेशन को जब सजा दी गई तो हजारों लोग वहां एकत्रित हो गए, लोग चिल्लाने लगे ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, भगवान के साथ ये अन्याय हुआ है, भगवान के साथ अन्याय हुआ है, बिशकेशन के साथ अन्याय हुआ है। तो लोग बहुत चिल्ला रहे थे बाहर। तो वहां पर क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर थे, उनका नाम था डॉक्टर वॉल्टर्स, और इन्होंने कई किताबें पढ़ी हुई थी योगियों के बारे में। तो इस किताबों में पढ़ा था कि योगियों की शक्ति जो है जटाओं में होती है, तो इसने इतनी बड़ी कैंची ली, मतलब कोर्ट से वो बाहर निकल ही रहा था तो इतनी बड़ी जब कैंची ली और कैंची लेकर जो है पीछे भागा और पीछे जाकर उसने जबरदस्ती पकड़ के उस योगी के बिशकेशन की सारी बालें सारी जटाएं काट दी, पीछे सारे बाल काट दिए, और जैसे बाल काटे तो बिशकेशन वहीं पर गिर पड़ा ऋषि और कमजोर हो गया, चल भी नहीं पा रहा था वो। तो भक्तिवर ठाकुर ने देखा रही तो गिर गया, बाल कटते ही गिर गया ये, तो ये फॉलोअर्स ने देखा करिए कैसा भगवान है कि केश कटते ही जो है बाल कटते नीचे गिर गए हैं, तो उसके जितने फॉलोअर्स सब छोड़ के उसको चले गए। तो इस तरह से बिशकेशन को दंडित किया गया। लेकिन बाद में 1873 में कुछ वर्ष के बाद उसने जो है जहर खा लिया जेल में ही और जहर खा के मर गया। उसके उपरांत भक्तिवर ठाकुर ने याजपुर में ब्रह्मा जी को भी पकड़ा क्योंकि वो बिशकेशन के संप्रदाय में था, अटीबाड़ी संप्रदाय, बहुत सारे ऐसे थे, ब्रह्मा जी भी थे, बलराम जी भी थे, बलराम जी को भी पकड़ा, ब्रह्मा जी को भी पकड़ा, ये सब अटीबाड़ी संप्रदाय में थे। तो इस भक्तिवर ठाकुर ने जो है सबका जो है पर्दाफाश किया। तो भक्तिवर ठाकुर इतने शक्तिशाली और फियरलेस वैष्णव आचार्य थे जिन्होंने जो है असंभव कार्य संभव करके दिखाया। 1880 में भक्तिवर ठाकुर ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा कृष्ण संहिता। इस ग्रंथ में कुछ भक्तिवर ठाकुर ने भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि यहां तक कि दास्य रस सख्य रस वात्सल्य रस माधुर्य रस की चर्चा की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि अलग अलग युगों में अलग अलग महामंत्र होते हैं और कलयुग में क्या महामंत्र है, यानी हरे कृष्ण महामंत्र है, और बताया कि धीरे धीरे ये मधुर रस माधुर्य रस का प्रचार प्रसार पाश्चात्य जगत में भी होगा। भक्तिवर ठाकुर ने ऐसी भविष्यवाणी की है उस कृष्ण संहिता में। तो यानी कि भक्तिवर ठाकुर ने बहुत सारी भविष्यवाणी की और कृष्ण संहिता में 1880 में कृष्ण संहिता बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं 10th कैंटो श्रीमद भागवतम का अनुवाद मैं करना चाहता था और विशेष रूप से दशम स्तंभ के ऊपर टिप्पणी देना चाहते थे, लेकिन मैं कर नहीं पाया, इस कारण से मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ कृष्ण संहिता, भक्तिवर ठाकुर लिखा। तो भक्तिवर ठाकुर उस ग्रंथ में लिख रहे हैं कि कैसे पाश्चात्य जगत में भी ये माधुर्य रस जाएगा और वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिशा में तो अभी है लेकिन पाश्चात्य जगत में नहीं है। और उसके बाद फिर भक्तिवर ठाकुर 1874 में 6 फरवरी को शुक्रवार के दिन दोपहर के समय बिमला प्रसाद जी प्रकट हुए, यानी कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1874। और उनका नाम बिमला प्रसाद उन्होंने रखा क्योंकि बिमला देवी की कृपा से, बिमला देवी योगमाया जो जगन्नाथ मंदिर में है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सबसे पहले बिमला देवी को मिलता है, तो इसलिए बिमला देवी की कृपा से मिला, ये योगमाया की कृपा से मिला। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो वास्तव में चेतने महापुरुष के आंदोलन का प्रचार प्रसार करे और ये भगवान विष्णु की किरणों जैसा हो, ही मस्ट बी अ रे ऑफ विष्णु, ऐसा भक्तिवर ठाकुर ने प्रार्थना की थी। और माता भगवती के गर्भ से बिमला प्रसाद प्रकट हुए और उनके पूरे शरीर में ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड जो था जैसे बच्चे के शरीर में होता है वो एक जने के तरह जो है लपटा हुआ था उनके शरीर में, एक जो जने की तरह लपटा हुआ था, और भक्तिवर ठाकुर समझ गए थे कि ये वही पुत्र है, ये वही संतान है। तो इस तरह से 6 महीने जब बीत गए अन्न प्राशन का उत्सव मनाया जाता है जब पक्षियों को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भक्तों ठाकुर के घर के बाहर से निकल रही थी। जहाँ भी चेतन मठ है वहाँ भक्तों ठाकुर का घर था वहाँ। तो जगन्नाथ मंदिर से निकलती है रथ यात्रा, कभी कभी जगन्नाथ जी की लीला होती, जगन्नाथ जी रुकते, तो तीनों के तीनों रथ वहाँ पर रुक गए। कभी कभी तो एक रथ रुकता है जगन्नाथ जी का, बलदेव जी सुभद्रा जी चल रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी तीनों रथ एक साथ रुक जाते हैं। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ तीनों के तीनों एक साथ रुक गए भक्त ठाकुर के घर के बाहर और लगातार तीन दिन वहां रुके रहे। और हजारों हजारों भक्त, लाखों लाखों भक्त जो है जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे, रथ हिल नहीं रहा है, ऐसी लीला भगवान करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में लीला होती है। तो क्यों रुक गए जगन्नाथ जी, क्यों रुक गए? क्योंकि वो अपने भक्त को देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करने के आते हैं। जिस तरह से वैकुंठ से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि स्वयं भगवान नारायण वैकुंठ छोड़ के मधुबन गए ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए। जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकले थे, ओडिशा से निकले रहे थे और वृंदावन जाना था, लेकिन वहां तनाई नाटशाले से वापस आ गए थे और रामकेली गए थे। और रामकेली में किसका दर्शन करने के लिए गए थे? श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो इस तरह से भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है भक्तों ठाकुर जो है की संतान यानी बिमला प्रसाद का दर्शन करना चाह रहे थे जगन्नाथ जी। और जब भागवती देवी, क्योंकि भक्तों ठाकुर जगन्नाथ टेम्पल के मैनेजर थे, तो उनकी पत्नी भागवती देवी को भी मना नहीं किया गया रथ पर चढ़ने के लिए। और बच्चे को लेकर चढ़ी रथ पर, जगन्नाथ जी के सामने जब गई तो जगन्नाथ जी की माला, उनकी गले की माला बिमला प्रसाद के ऊपर गिरी आ गई। और पहली बार बिमला प्रसाद को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला, मुंह खोलते ही सबसे पहले महाप्रसाद। हमने तो बचपन से पाप खाया है, बचपन से ही मुंह खोलते ही पाप खाया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एनीबॉडी हु इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस इज सिंपल। तो कृष्ण भावना नहीं भावित नहीं होंगे तो मुंह खोलते पाप खाना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुचनते सर्व किल विषयी भुंजते थे अगम भाव पचनते थे हाथ पक कारना। तो यहां पे तो बिमला प्रसाद के इतनी कृपा जगन्नाथ जी की, जन्म लेते मुंह खोलते सबसे पहले उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला। तो ये था अन्न प्राशन उत्सव। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जो ओडिशा का राजा था, जनरली ओडिशा के जो राजा होते हैं वो जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि राजा भी ठीक नहीं होते हैं। तो ये ओडिशा के जो राजा थे जगन्नाथपुरी में, ये थोड़ा सा इनका आचरण थोड़ा ठीक नहीं था। ये जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और भक्तों ठाकुर प्रत्येक दिन वहाँ भागवत कथा करते थे। भक्ति मंडप में प्रत्येक दिन भक्तों ठाकुर भागवत कथा करते थे। तो वहाँ के जोर जोर से चिल्लाने लगे और कथा को डिस्टर्ब करने लगे। तो भक्तों ठाकुर बहुत गुस्सा हुए। भक्तों ठाकुर ने कहा कि आप इस राज्य के राजा हो सकते हैं, लेकिन जानते हैं ये जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे सृष्टि के नाथ हैं, तो ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त ठाकुर बहुत क्रोधित हुए। और उसके बाद भक्त ठाकुर ने कथा उन्होंने रोकी नहीं। और साथ में एक बार उस इसी राजा ने 80,000 रुपये का घोटाला कर दिया। लगभग 80,000 रुपये का घोटाला उस समय, समझ लीजिए 19th century में है ना, उस समय वो घोटाला किया। तो भक्तों ठाकुर को बड़ा गुस्सा आया, भक्तों ठाकुर को दंडित किया, क्योंकि भक्तों ठाकुर चीफ मजिस्ट्रेट भी थे। उन्होंने कहा इनके लिए दंड ये है कि जगन्नाथ जी को रोज 56 भोग लगाए। तो इस तरह से भक्तों ठाकुर ने जगन्नाथ जी की सेवा प्रदान की, राजा को इस तरह से दंडित किया कि आप इस तरह से सेवा करिए, रोज 56 भोग लगाइए जगन्नाथ जी। तो रोज, और लेकिन वो राजा फिर भी नहीं माना। राजा ने फिर जो है अलग से हुई रूप से सीक्रेटली उसने यज्ञ किया भक्तों ठाकुर को मारने के लिए। और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के तरह तरह के मंत्र पढ़े और भक्तों ठाकुर को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस राजा का तो लड़का मर गया। तो इस तरह से भक्तों ठाकुर के ऊपर कोई मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वास्तव में जो हरिनाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू करते हैं, उनके ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता है हरिनाम के नाम। तो इस तरह भक्तों ठाकुर उस राजा को शिक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन राजा सुधर नहीं रहा था। और 5 साल के बाद पूरी में भक्तों ठाकुर पूरी में सेवा करने के बाद, उसके बाद 5 वर्ष के बाद अलग अलग स्थानों में जाकर भक्तों ठाकुर को कार्य दिया गया, उनको पद दिया गया। पर 1878 में नरेल नामक स्थान में भी जाकर भक्तों ठाकुर वहां पर जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। और 1880 में उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित कर दिया था कृष्ण संहिता, जैसे हमने पहले बताया कृष्ण संहिता उन्होंने ग्रंथ पब्लिश किया, और साथ में उन्होंने एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ सज्जन तोषणी को भी प्रकाशित किया। सज्जन तोषणी जो बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने उसको और प्रकाशित किया, उसका इंग्लिश एडिशन भी पब्लिश किया हारमोनिस्ट के नाम से, हारमोनिस्ट के नाम से पब्लिश किया। तो बेसिकली मैगजीन्स पब्लिश करना शुरू से ही प्रथा रही है हमारे वैष्णव संप्रदाय में। और उसके बाद भक्तों ठाकुर की इच्छा हुई, लगभग जो 40 वर्ष के हो गए थे, भक्तों ठाकुर की बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि वो दीक्षा ग्रहण करें, और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि उनके गुरुदेव उनके भी हों और उनको दीक्षा प्राप्त हो। और इस तरह से सपने में उनके गुरुदेव आए बिपिन बिहारी गोस्वामी, उन्हें कहा जल्दी मैं आऊंगा और आपको दीक्षा दूंगा। तो एक दिन उनके घर पे जब पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जब खोला तो बिपिन बिहारी गोस्वामी सामने खड़े। तो बिपिन बिहारी गोस्वामी ने भक्त ठाकुर को दीक्षा दी, और चैतन्य चरितामृत के भाष्य में अमृत प्रभाव भाष्य में अंत लीला के अंत में वहां पर टीका देते हुए भक्त ठाकुर लिख रहे हैं, द एमिनेंट बिपिन बिहारी हुज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एनर्जी ऑफ लॉर्ड हरि हु स्पोर्ट्स इन द फॉरेस्ट ऑफ व्रज हैज डिसेंडेड इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर सीइंग मी इन द डार्क वेल ऑफ ओनली एग्जिस्टेंस ही हैज डिलीवर्ड दिस हंबल सर्वेंट ऑफ हिज। तो बता रहे हैं कि मेरे जो गुरुदेव हैं ब्रजलीला में नित्य परिकर हैं भगवान के, और आज मेरे समक्ष गुरु के रूप में आए हैं, और मैं क्योंकि इस अंधकार में ये जो भवसागर है कुएं के समान है गिरा पड़ा हूं, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे गुरुदेव आए हैं। तो इस तरह से बिपिन बिहारी गोस्वामी की प्रशंसा की भक्तों ठाकुर ने। और उसके बाद 15 वर्ष के बाद 1881 में भक्तों ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भी मिले, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिले। और क्योंकि वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्रीपाल बलदेव विद्याभूषण की परंपरा में थे, यानी कि हमारे ही परंपरा में थे। और उसके बाद जब वापस आए जैसोर तो बीमार बहुत पड़ गए थे, और कुछ समय के लिए वो बीमार जो पड़े तो छुट्टी ली उन्होंने और वापस कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आने पर उन्होंने घर बनाया अपना, और घर का नाम रखा भक्ति भवन। तो ये भक्ति भवन वो घर है जहाँ ठाकुर भक्ति भवन ने अपना शरीर छोड़ा था कलकत्ता में। तो भक्ति भवन कलकत्ता में वो स्थान है जहाँ भक्ति ठाकुर का घर है। 1885 में उन्होंने बहुत ही एक सुंदर लेख लिखा जो कि बहुत प्रचलित है। 1885 में सज्जन तोषणी में भक्ति ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की भविष्यवाणी की, और हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी की, क्योंकि भक्ति ठाकुर ने जिस संतान की आशा की थी वो तो प्रकट हो चुके थे 1874 में। लेकिन ये जो लिखा लेख सज्जन तोषणी ये 1885 में लिखा है। तो हालांकि भक्ति ठाकुर की जो भविष्यवाणी उनके प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के लिए भी है, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए भी है विशेष रूप से, ये इस लेख से पता चले। तो भक्ति ठाकुर लिखते हैं, लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट एडवेंट हिमसेल्फ टू लिबरेट ओनली अ फ्यू मैन ऑफ इंडिया। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु केवल भारतवासियों को ही, उनको कुछ भारतवासियों को उद्धार करने के लिए नहीं प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। फिर भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि His main objective was to emancipate all the entities of all the countries throughout the entire universe. यानी जितने भी जीवात्मा है पूरी पृथ्वी में पूरी सृष्टि में सबका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, और एंड प्रीच इटर्नल रिलीजन सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य भागवत में कहते हैं, पृथ्वी थे अथयाचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए में मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगरादि गांव हैं सब जगह मेरे नामों का प्रचार होगा, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भविष्यवाणी की है। और वेरी सून द अनपैरेलल्ड पाथ ऑफ हरिनाम संकीर्तन विल बी प्रोपगेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत जल्दी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार पूरे पृथ्वी में होगा। वर्ल्ड होली नेम वी क्यू वर्ल्ड होली नेम इटर्नली है कि नहीं। तो पूरे विश्व में हरिनाम क्या केवल हफ्ते भर के लिए नहीं मनाया जा रहा अभी, लेकिन शाश्वत रूप से मनाया जाएगा विश्व में हरिनाम। तो प्रभुपाद जी ने वो भविष्यवाणी सच की। और उसके बाद और क्या भक्त ठाकुर कहते, फॉर दैट डे व्हेन द फॉर्चुनेट इंग्लिश फ्रेंच रशियन जर्मन एंड अमेरिकन पीपल विल टेक अप द बैनर्स मृदंगास एंड द करतास एंड रेस कीर्तन थ्रू देयर स्ट्रीट्स एंड टाउन्स व्हेन विल दैट डे कम। Oh, for that day when fair-skinned men from their side will raise up the chanting of Jai Sachinandan, Gaur Hari, and join with the Bengali devotees. हरी हरी। तो कब वो दिन आएगा? भक्तों ठाकुर कहते हैं कि जब अंग्रेज लोग, अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, ये सब आएंगे और बंगाली भक्तों के साथ जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, गौर हरि का कीर्तन करेंगे नवदीप धाम श्रीधाम मायापुर। तो 1973 में जब पहली बार इस्कॉन में, मायापुर में एनुअल फेस्टिवल हुआ इस्कॉन का, जब लगभग 500 से अधिक प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे, उस समय बहुत अधिक भक्त नहीं आए थे, तो ये सारे प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे देश विदेश से, और पहली बार संकीर्तन हुआ था। तो प्रभुपाद ने कहा कि अब ये भक्तों ठाकुर की भविष्यवाणी सच हो गई, क्योंकि इस संकीर्तन में अमेरिकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, सब आ चुके हैं, अफ्रीकन्स भी हैं। देखिए सब संकीर्तन कर रहे हैं, सब सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों ठाकुर की भविष्यवाणी सच हो गई 1973, इतने वर्ष पहले प्रभुपाद जी के रहते। तो इस तरह ये भविष्यवाणी सच की श्रील प्रभुपाद जी ने, और उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेसी और की, और उन्होंने भविष्यवाणी की जो एग्जैक्टली श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, क्या लिखते हैं, अ पर्सनैलिटी विल सून अपियर टू प्रीच द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड मूव अनरेस्ट्रिक्टेडली ओवर द होल वर्ल्ड विद दिस मैसेज। तो ठीक है, ये श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की भी भविष्यवाणी की है उनके लिए भी, लेकिन जो अनरेस्ट्रिक्टेडली मूव करेंगे पूरे पृथ्वी में और चैतन्य महापुरुष की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे पूरे पृथ्वी में, वो तो केवल एक ही आचार्य ने किया है, वह श्रील प्रभुपाद। तो भक्ति ठाकुर ने यह प्रेडिक्शन किया था 1885 में, और 1896 में जब भक्ति ठाकुर ने ग्रंथ भेजा था चैतन्य शिक्षा अमृत, चैतन्य शिक्षा अमृत नहीं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, ये मेजर यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड के वहां भेजा था, और मॉन्ट्रियल में मैकगिल यूनिवर्सिटी में वहां की लाइब्रेरी में भेजा था, जहां पर हमारे गुरु महाराज ने भी एमबीए किया था उस समय, और वहां श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भी गए थे 1970s एंड मिड 70s में, और वहां की लाइब्रेरी में जब गए बुक्स रखवाने के लिए, तो उन्होंने वहां भक्ति ठाकुर की बुक देखी, और वो महाराज को, हमारे गुरु महाराज को किताब मिली थी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। और प्रभुपाद जी ने जब पता कि प्रभुपाद को जब बताया कि प्रभुपाद हमें भक्ति ठाकुर की बुक मिली है या लाइब्रेरी में मैकगिल यूनिवर्सिटी में, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ 1896 इस वर्ष भक्ति ठाकुर ने यह ग्रंथ भेजा था और उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ। प्रभुपाद ने 1896 में, क्या कोइंसिडेंस है देखिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है वो आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति ठाकुर की भविष्यवाणी को सच किया। 1886-1887 में, 1886-1887 में भक्ति ठाकुर ने लगभग 10 ग्रंथ एक साथ प्रकट किए एक ही साल के अंदर, 10 बुक्स पब्लिश किए उन्होंने, और इस कारण से उनके इस अचीवमेंट को देखते हुए बहुत सारे वैष्णवों ने मिलकर उनको पत्र लिखा, जिसमें उनके गुरुदेव भी थे विपिन बिहारी गोस्वामी और बहुत सारे गोस्वामी से, और वो लेटर है हमारे पास, अभी नहीं है वैसे, है हमारे पास, है उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने इतना बड़ा कार्य किया चैतन्य महापुरुष के इस आंदोलन के लिए और इतने सारे ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे हैं जिसमें चैतन्य महापुरुष की शिक्षाएं हैं, तो हम सब वैष्णव जितने भक्त हैं उनकी इच्छा है कि आप इस उपाधि को स्वीकार करें, हम चाहते हैं कि आज से आप जाना चाहें भक्तिनोद ठाकुर के नाम से। तो तब से उनका नाम पड़ गया सचिनानंद भक्तिनोद ठाकुर, ये उनका पूरा नाम। तो इस तरह से केदारनाथ दत्त तो नाम था ही, लेकिन ये नाम ज्यादा विख्यात हो गया था। और उसके बाद फिर जब वो भक्तिनोद ठाकुर ने फैसला किया कि आप वो जो है गवर्नमेंट ड्यूटी से रिटायर होना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को छोड़ नहीं रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं आपको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना एक्सपर्ट जज कहां मिलेगा कि बड़े से बड़े केस को और कुछ घंटे में निपटाता, और बहुत एक्सपर्ट जजमेंट देते थे वो, भक्तिनोद ठाकुर को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो भक्तिनोद ठाकुर ने सोचा नहीं नहीं मैं रिटायर करना चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ वृंदावन जाके भजन करूंगा, तो विचार कर ही लिया था, और कलकत्ता की तरफ गए भी थे, और जहां जाकर जब ताड़केश्वर महादेव के मंदिर में, जो कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है ताड़केश्वर महादेव का मंदिर, और ताड़केश्वर महादेव के मंदिर में जब रुके तो महादेव ने स्वयं शिव जी ने भक्तिनोद ठाकुर के सपने में आके कहा, बोलते हैं कि ठाकुर आप कहाँ जा रहे हैं, आप ब्रज जा रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आप वापस नवदीप जाइए, आप नवदीप जाके भजन करिए, और मेरी इच्छा यह है कि आप ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पता लगाए, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा, महाप्रभु के जन्म स्थान तो अभी तो पता ही नहीं लगा है, लीला सारी लुप्त है, अभी आप कहां जा रहे हैं ब्रज। तो भक्तिनोद ठाकुर ने कहा कि अरे शिव जी महादेव का इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, तो वापस लौटना है नवदीप धाम में, वापस लौटना है। और उसके बाद भक्तिनोद ठाकुर ने गोद्रुम द्वीप में बहुत सुंदर वहां पे एक भजन कुटीर बनाई, अभी तो इमारत बन गई है, बाद में बनाए थे इमारत को, लेकिन वहां बहुत छोटी भजन कुटिया बनाई थी, भजन कुटीर बनाया था। और वहां पे एक चंदन का पेड़ भी था, पौधा, छोटा सा पौधा चंदन का उगरा था, और भक्त ठाकुर ने कहा था उसको काटना नहीं है, अंकुरित था सिर्फ, तो उसको काटा ना जाए, क्योंकि एक भी पेड़ उगने 50 वर्ष लग जाते, बहुत छोटा था, उसके बाद पता नहीं किसी ने काटा हुआ लग पाते, अभी तो कोई नजर नहीं आता वह चंदन का पेड़। तो इस तरह से वहां पे गोद्रुम द्वीप में भक्तों ठाकुर ने गोद्रुम द्वीप यानी कि कीर्तन के लिए जो है प्रमुख स्थान माना जाता है। और जैसे कि भक्तों ठाकुर ने नवदीप धाम बात में बताया है कि कीर्तन जो वहां मानता है, तो गोद्रुम द्वीप में भक्तों ठाकुर ने भजन कुटीर स्थापित किया। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की गवर्नमेंट से कि ठीक है, अगर आप मुझे, अगर आप रिटायर नहीं करना चाहते, रिजाइन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं रिजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कृष्णा नगर में आप मुझे स्थान दें, वहां पे ऑफिस में था, वहां से मैं ऑपरेट करूंगा। 1887 में भक्तिनाथ ठाकुर का ट्रांसफर हो गया कृष्णा नगर में, 1887 में। और भक्तिनाथ ठाकुर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पता लगाया जाए, और बहुत गहरा उन्होंने जो है रिसर्च किया, और दिन रात लगे रहे कि कहाँ है वो जन्म स्थान, कहाँ है जन्म स्थान, क्योंकि उस समय इस तरह के लोग जो है नवदीप में भी थे जो ये कह रहे थे कि नवदीप में जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो गंगा जी के पश्चिम दिशा में है। लेकिन भक्तों ठाकुर ने कहा ये ठीक नहीं, भक्तों ठाकुर यहां तक नवदीप टाउन में भी गए जो गंगा जी के पश्चिम दिशा में है, जिसको नवदीप टाउन कहते हैं, कुलिया ग्राम, और वहां जाके भी बहुत खोजबीन की, ठीक है हम यहां भी देख लेते हैं सच में अगर यहां पर भी है। वहां जाकर देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं यहां नहीं, उन्होंने कहा भक्तों ठाकुर ने कहा कि यहां महाप्रभु का जन्म स्थान हो ही नहीं सकता। तो भक्तों ठाकुर फिर वापस आए और बहुत चिंता करने लगे, एक धर्मशाला में ठहरे थे उस समय, उस धर्मशाला का नाम था रानी धर्मशाला। तो वहां पर अपने सुपुत्र कमला प्रसाद और उनके मित्र थे, और रात्रि के समय लगभग 10 बजे ऊपर गए, और 10 बजे जो ऊपर गए और उस धर्मशाला के उत्तरी दिशा में नॉर्दर्न साइड में दूर देखा, उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा मैंशन देखा, यानी कि इस्कॉन का टेम्पल, बहुत बड़ा मैंशन देखा उन्होंने, है ना, उस बहुत बड़े मैंशन को देखा, उस मैंशन बहुत एफिलिजेंट था। और भक्तों ठाकुर नवदीप धाम बाद में लिख रहे हैं, नित्यानंद पुरुषील जी को स्वामी को बता रहे हैं, अद्भुत मंदिर होए बे विकास, गौरंगेर लीला होए बे प्रकाश, क्या ऐसा हजारों हजारों भक्त मिलकर एक अद्भुत मंदिर का निर्माण करेंगे जहां से महाप्रभु की लीलाओं का प्रकाश होगा। नित्यानंद प्रभु श्रील जी को स्वामी को बता रहे हैं जो भक्तों ठाकुर ने प्रकाशित किया नवदीप धाम आत्मे, उसमें तो मैंशन को देखा, भक्तों ठाकुर ने कहा कमला प्रसाद से दिख रहा तुम्हें, तो कमला प्रसाद ने कहा मुझे दिख रहा है, कमला प्रसाद को दिखाई दी, वो भी वैष्णव थे, लेकिन वो जो फ्रेंड आया था साथ में क्लर्क, तो उसको बोला तुम्हें दिखाई दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो क्या बोला आकाश में तारे नजर आ रहे हैं बस, ठीक है तुम तारे ही देखो। तो भक्तों ठाकुर जो है फिर सुबह आए उसी जगह पर, लगभग सुबह जब सुबह जब पहुंचे छत पे जाके देखा, जो छत में देखा दूर देखा एक पाम ट्री था, वहां पाम ट्री देखा, उन्होंने कहा वो एफिजेंट मैंशन तो दिखाई नहीं दे रहा, रात को ही दिखाई दिया था केवल। तो भक्तों ठाकुर ने कहा ठीक है उस जगह पर मुझे जाना चाहिए, तो पता चला उस पाम ट्री का जो इलाका है वो बलाल डिगी नाम का स्थान है, और राजा बलाल सेन जो राजा लक्ष्मण सेन के सुपुत्र थे उन्होंने वहां पे एक महल बनाया था, उसके रिमेंस आज भी हैं, उसके रिमेंस आज भी आप देख सकते हैं, बलाल सेन का जो पैलेस है उसके रिमेंस अभी भी हैं वहां पर। तो उसके बाद उस रात्रि को भक्तिनाथ ठाकुर ने फिर से एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, उन्होंने देखा महाप्रभु को देखा, नित्यानंद प्रभु को देखा, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर को देखा, ये सब वहां पर बहुत भव्य संकीर्तन कर रहे हैं और बहुत तेज प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा अपने गुरु महाराज के लिए कि माय गुरु महाराज वाज इन एक्सटेसी, ही वाज डांसिंग इन एक्सटेसी इन द मिडस्ट ऑफ पंचतत्व इन श्रीधाम मायापुर, और वन डे ही लेफ्ट श्रीधाम मायापुर टू स्प्रेड द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ही वेंट टू कलकत्ता। तो भक्तिनाथ ठाकुर ये देख रहे हैं कि संकीर्तन चल रहा है, वो दृश्य देखकर जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होकर पूरा विश्वास अब उनको होने लगा कि निश्चित रूप से यहीं पे है, क्योंकि कृष्णानगर से वो वापस आए थे और कृष्णानगर में उनका कार्यालय था, तो वापस जब शनिवार को आए तो शनिवार को उनको एक दृश्य दिखाई दिया। और उसके बाद फिर इस अगले दिन क्या हुआ, उसके बाद फिर अलग अलग स्थानों में गए, अलग अलग लीला स्थलियों में गए चैतन्य महापुरुष से संबंधित, और उस स्थान में पहुंचे जहां पर बलाल डिगी के पास ही योगपीठ में, वहां जब गए तो वहां पर देखा कि तुलसी की बहुत सारे पौधे थे, बहुत सारी तुलसी के पौधे थे, पूरा माउंट था, एक पूरा पहाड़ से बन गया था तुलसी का वहां पर। तो उन्होंने आसपास जो लोग रहते थे, कुछ मुसलमान थे कुछ वहां पे लोग रहते थे, उनसे पूछा कि कौन सा स्थान है। कुछ वहां के लोकल लोगों ने बताया, वहां पे जो रह रहे थे कुछ वहां के जो भक्त थे, धामवासी थे, उन्होंने बताया कि ये तो यहां थी, ये तो महाप्रभु का जन्म स्थान, उन्होंने ऐसा बोला। तो भक्तों ठाकुर को लग गया देखकर कि वास्तव में ये सही बात है, यही महाप्रभु का जन्म स्थान है, क्योंकि उनका तो पूरा विश्वास था, लेकिन और थोड़ा कंफर्मेशन चाहते थे। तो इस तरह से वो अलग अलग लीला स्थलियों में गए, और उसके बाद उन्होंने भक्ति रत्नाकर और चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर है का जो ग्रंथ है उसको भी पढ़ा, उसमें से प्रमाण देखा। और भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, नवदी मध्य मायापुर नामे स्थान, ये चैतन्य भागवत में दिया है, जथाए जन्मिले गौरचंद्र भगवान। तो नवदी में सीधा मायापुर में, क्योंकि कुलिया ग्राम में कोई मायापुर नहीं है, कुलिया ग्राम में गंगा जी के पश्चिम दिशा में मायापुर नाम का कोई स्थान नहीं है। ऐसे 8 एविडेंसेस हैं जो प्रूव करते हैं कि जो भक्तों ठाकुर ने पता लगाया जन्म स्थान वही वास्तव में प्रमाणिक है, पूरा कंप्लीट प्रूफ है इसका। और यहां तक कि जो ट्रेडिशनल मैप जो देखे गए थे 16th century के मैप में भी इसे क्लियर प्रूफ मिल रहा है कि वास्तव में नवदीप धाम जो ओरिजिनल नदी धाम या महाप्रभु का जन्म स्थान जो था वो यहीं पे था, गंगा जी की पूर्वी दिशा में। और इस ग्रंथ के आधार पर, चैतन्य भागवत के ग्रंथ के आधार पर और भक्ति रत्नाकर के अनुसार ये प्रमाणित हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहां पर है, तो गंगा जी की पूर्वी दिशा में है। और इस तरह से भक्तों ठाकुर वापस कृष्णा नगर गए, और वहां पे थे द्वारिका बाबू करके, उन्होंने जो है ट्रेडिशनल मैप्स भी लेकर आए, और उन मैप्स के द्वारा भी प्रूफ हुआ, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले जिसके द्वारा प्रमाणित हुआ कि महाप्रभु का जन्म स्थान वो है। और साथ साथ उन्होंने ग्रंथ का प्रकाशन किया श्री नवदीप धाम महात्म्य, जिसमें नवदीप धाम में पूरे परिक्रमा करके भक्तों ठाकुर ने अलग अलग लीला स्थलियों में अपना भाव व्यक्त किया, और ग्रंथ के 2 प्रकट किए, परिक्रमा खंड और एक था नवदीप भाव तरंग। तो परिक्रमा खंड में ये वर्णन कर रहे हैं किस तरह से नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा ले गए थे। इससे पहले श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर गए थे श्री ईशान ठाकुर के साथ, जो शची माता के सेवक थे, वो उनको लेके गए थे। लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी पाद जी गए थे, और उन्होंने नवदीप मंडल की परिक्रमा की थी, जिसका वर्णन भक्तिनो ठाकुर नवदीप धाम महात्म्य में कर रहे हैं। और ये ग्रंथ पब्लिश हुआ 1893 में, 1893 में। और उसी वर्ष जब भक्तिनो ठाकुर ने पता लगा लिया, तो उनको कंफर्म करना था कि यही स्थान वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। और उसी समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए, जो उस समय कुलिया ग्राम में रह रहे थे, यानी कि गंगा जी के पश्चिम दिशा में रहे थे। जगन्नाथ दास बाबा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज, मुझे कुछ आपसे पूछना है, प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलिए, और मुझे ऐसा लगा है कि वही जन्म स्थान है, मैं चाहता हूँ कि आप जाके उस स्थान को प्रमाणित करें। तो जगन्नाथ दास बाबा जी लगभग 140 वर्ष के थे, और उनके सेवक उनको टोकरी में बिठाकर उनको लेके गए भक्तिनो ठाकुर के साथ। और जैसे ही वहां पर भक्तिनो ठाकुर लेके गए जन्म स्थान के बाद, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने देखा, अपनी पलकों को ऊपर करके, पलकें सारी ढकी हुई थी उनकी, आंखें पूरा खोल नहीं पाते थे, तो आपने आंखों को खोला, ऐसे पलकों को ऊपर उठाया, उन्होंने कहा यही तो निमाई जन्म स्थान, देखते ही खोल दिया। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बताते हैं कि 10 ऊपर उछले, और उछल के नीचे जब आए तो नृत्य करने लगे उस उम्र में। तो ये भक्तिनो ठाकुर ने प्रमाणित किया गुरु साधु शास्त्र के आधार पर कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान वही है योगपीठ। योगपीठ का मतलब है जहां महाप्रभु अवतरित हुए, यानी कि वो स्थान जहां महाप्रभु अवतरित हुए अपनी लीलाओं को करने के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना सुरभि कुंज में भी भजन कुटीर बनाया, और सुरभि कुंज में उन्होंने जैन धर्म लिखना प्रारंभ किया। जैन धर्म बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है भक्तिनो ठाकुर के द्वारा, और भक्तिनो ठाकुर के लगभग 100 ग्रंथ है, उसमें सबसे प्रचलित ग्रंथ ये है जैन धर्म चैतन्य शिक्षामृत। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद प्रत्येक भक्त को चाहिए कि जैन धर्म जरूर पढ़े, कि जैन धर्म में भक्तिनो ठाकुर ने बेसिक फिलॉसफी से लेकर एडवांस फिलॉसफी सारा एक ही बुक में दे दिया है, यानी पूरा गौड़िया वैश्य सिद्धांत एक ही ग्रंथ में उपलब्ध है, वो है जैन धर्म। तो मतलब मास्टरपीस है भक्तिनो ठाकुर का, मतलब सच अ वंडरफुल बुक। अगर हम एक बार खोलेंगे उसको बंद करने के बाद ही फिर अपसाल लें। इज सच अ वंडरफुल बुक। फिर फास्टे की चिंता नहीं करेंगे कि 12 बजे तक फास्टे, तो ये बहुत बहुत सुंदर बुक है। लेकिन पहले प्रभुपाद जी बुक्स पढ़े तभी समझ में आएगा। तो इस तरह ये भक्ति ठाकुर ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। और उसके बाद सुरभि कुंज में जब उन्होंने भजन कुटीर बनाया तो वहां से भी उन्होंने एक दृष्टि विजन देखा, उन्होंने उनको एक दृश्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने क्या देखा, सुरभि कुंज में बैठकर, वहां भजन कुटीर है, सुरभि कुंज में स्पॉट है जहां भक्ति ठाकुर बैठा करते थे, और एग्जैक्टली देखेंगे वहां से हमारे इस्कॉन का टेम्पल दिखता है बिल्कुल जलांगी नदी के उस पार। और वहां देखा तो उन्होंने क्या विजन देखा कि मायापुर एक गोल्डन सिटी मायापुर में मैनिफेस्ट हो रहा है चैतन्य महाप्रभु की महिमा का प्रकाश विस्तार करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने ये दृश्य देखा। और 1895 में कह लीजिए, 2 वर्ष के बाद उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद फिर प्रचार के लिए गोद्रुम द्वीप में ही निवास करने लगे। और भक्त ठाकुर ने बहुत सुंदर गोद्रुम भजना उपदेश एक भजन भी लिखा था और कई ऐसे भजन लिखे, बहुत प्रचलित ग्रंथ है भक्ति ठाकुर के। और उन्होंने प्रचार का नाम दिया नाम हाट, इस प्रचार का नाम क्या दिया, नाम हाट। नाम हाट मतलब नाम का बाजार, जहां नाम का वितरण होता है। और इसका मूल्य क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो आप इस हरि नाम को खरीद सकते हैं और कोई कीमत नहीं है, इसकी श्रद्धा ही इसकी कीमत है। तो भक्त ठाकुर ने बहुत सुंदर वर्णन किया इसका नाम हाट का। और बताते हैं बंगाल में लगभग 500 नाम हाट खोले भक्त ठाकुर ने, 500 से अधिक नाम हाट खोले। और लगभग इन दिनों में, इस समय में लगभग उन्होंने 18 पुस्तकें प्रकाशित, 18 बुक्स और पब्लिश किया भक्त ठाकुर ने। और उसके बाद हर जगह हर स्थान में जाकर उन्होंने संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। और जैसे हमने पहले बताया 1893 में उन्होंने जैन धर्म भी लिखा था पहले। और लगभग 56 वर्ष की उम्र में उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर किया और वहाँ सुरभि कुंज में रहने लगे। यानी कि वो पहले जो भजन कुटीर है जो बाद में पहले जो बनाया था वहाँ पे बाद में रहने लगे, पहले सुरभि कुंज में रहने लगे थे भक्ति ठाकुर। और उसके बाद उनकी बड़ी इच्छा हुई कि मायापुर धाम में योगपीठ में एक बहुत सुंदर मंदिर बने चैतन्य महापुरु के जन्म स्थान में। और क्या किया भक्ति ठाकुर ने, भक्ति ठाकुर कलकत्ता जाते थे और घर घर जाके 1-1 रुपया मांगते थे। और अमृत बाजार पत्रिका में लिखा केदारनाथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जो रिटायर हो गए हैं, सीधा मायापुर में योगपीठ में मंदिर बनाने के लिए कलकत्ता में जाते हैं और प्रत्येक घर में जाके 1-1 रुपया मांगते हैं। तो एक बार उनकी पत्नी ने क्या किया, एक ही व्यक्ति से 10 रुपये ले लिए। वो बहुत धनी व्यक्ति था उन दिनों, 10 रुपये बहुत होता था। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान था, ले लो 10 रुपये ले, कोई बात नहीं टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए मैं डोनेट करता हूँ। आजकल 10 रुपये में एक ईंट भी नहीं आती है नहीं। तो 10 रुपीज दिया तो भक्त ठाकुर को पता चला, भक्त ठाकुर बहुत गुस्से हुए, बहुत क्रोध थे। भक्त ठाकुर ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने 10 लोगों को वंचित कर दिया सेवा से। एक व्यक्ति से 10 रुपये लेके आपने 10 लोगों को वंचित कर दिया सेवा से। और 3 दिन तक भक्त ठाकुर ने अपनी पत्नी से बात नहीं की। तो इसलिए हमारे जो आचार्य होते हैं वो दक्षता होती है, किसी एक व्यक्ति को सेवा नहीं करना देते पूरा। कोई बोलेगा मैं ही मंदिर बना देता हूँ, नहीं आप पूरा मंदिर नहीं बनाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे फिर। तो इसलिए आप इतना ही दीजिए, बाकी सब भी करेंगे सेवा। तो ये आचार्यों का मत आज भी है, हमारे गुरु महाराज भी ऐसे। तो इस तरह से तो ये वैष्णव आचार्यों का एक ही भाव होता है, एक ही मूड होता है। और जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस समय बहुत सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ अदोक्षज विष्णु का, जिसका दर्शन आज योगपीठ मायापुर में कर सकते हैं। अदोक्षज विष्णु बहुत छोटे से हैं, काले से उनका रंग है और बहुत सुंदर विग्रह है, चतुर्भुज रूप। इस बताया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी बताया गया था कि ये उस समय का है जब जगन्नाथ मिश्र थे। यानी जगन्नाथ मिश्र अपने घर में इन श्री विग्रह की पूजा करते थे, अदोक्षज विष्णु की सेवा करते थे। 1895 में 21 मार्च को और ये जो है मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो उस समय विष्णुप्रिया जी का विग्रह, चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, ये 2 विग्रह स्थापित किया था भक्ति ठाकुर ने। विष्णुप्रिया और गौरंग महाप्रभु का विग्रह स्थापित किया था। और यह उत्सव खेतरी उत्सव से कम नहीं था। महाप्रभु के जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतरी ग्राम में बहुत सुंदर गौर पूर्णिमा मनाई थी, तो उसी भव्य रूप में मनाया गया था। हजारों हजारों की तादाद में वैष्णव एकत्रित हुए थे और यहाँ पर योगपीठ में प्राण प्रतिष्ठा हुई विष्णुप्रिया और गौरंग महाप्रभु के विग्रह की। और उसके बाद फिर इस तरह से सन 1900 में भक्तिनाथ ठाकुर वापस जगन्नाथपुरी आ गए और भक्तिनाथ ठाकुर ने एक भजन कुटीर वहां पर भी बनाया हरिदास ठाकुर की समाधि के सामने। और स्थान का नाम रखा भक्ति कुटीर, और वो स्थान विश्वाम को प्राप्त हो गया और वहां पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं लेकिन मंदिर है, छोटा मंदिर है। कभी जाए हरिदास ठाकुर की समाधि के बिल्कुल सामने है वो भक्ति और ठाकुर का भजन कुटीर है जहां पे मंदिर बनाया है, बिल्कुल सामने। तो भजन कुटीर वहां पे भक्ति और ठाकुर ने बनाया और वहां पे बहुत सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो आप सबको पढ़ना चाहिए, जिस ग्रंथ का नाम है हरिनाम चिंतामणि। अभी हाल ही में सर्वसाक्षी प्रभु ने बहुत सुंदर बंगाली वर्सेस भी दिए हैं और हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। तो हरिनाम चिंतामणि उस समय 1900 में पब्लिश किया और 1908 में भक्तिराव ठाकुर ने फैसला किया कि अब वो गृहस्थ आश्रम त्यागेंगे और बाबा जी वेश लेंगे। तो बाबा जी महाराज से बाबा जी वेश लेना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा प्रयास किया, लेकिन बाबा जी महाराज बार बार यहीं कहीं छुप जा रहे थे। उनको बोले नहीं, मैं कैसे आपको वेश दे सकता हूँ, क्योंकि भक्तिराव ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मानते थे। बाबा जी महाराज जो श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर के शिक्षा गुरु थे, भक्ति ठाकुर के शिक्षा गुरु थे, लेकिन अब बाबा जी वेश लेने की बात आई तो भक्ति ठाकुर कहते हैं मैं बाबा जी वेश किससे लूंगा, बाबा जी महाराज से। तो बाबा जी महाराज यानी गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज से लेना चाह रहे थे बाबा जी वेश, और बाबा जी वेश लिया 1908 में। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो बहिर्वास था और उनका जो कोपिन उन्होंने धारण किया, भक्ति ठाकुर ने बाबा जी वेश इस तरह से लिया। और उसके बाद फिर लगभग 2 वर्ष के बाद 1910 में भक्ति भवन कलकत्ता में अपना कमरा उन्होंने बंद कर लिया, दरवाजा हमेशा के लिए, और ये कह के कि उनको पैरालिसिस हो गया है, लेकिन वास्तव में उनको कृष्ण प्रेम का पैरालिसिस हुआ था, जिसमें वो बिल्कुल समाधि में थे और निर्जन भजन में रह गए लगभग 4 वर्ष तक अंतरीला में। और इस तरह से 23 जून को श्रील गदाधर पंडित के तिरुभाव दिवस के दिन भक्तिराव ठाकुर ने अपना देह त्यागा और नित्य लीला में प्रवेश किया। तो भक्तिराव ठाकुर गदाधर पंडित के जो डिसअपीयरेंस डे के दिन ही उनका तिरुभाव हुआ, इसका मतलब क्या है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि भक्तिराव ठाकुर एक्चुअली वो गदाधर शक्ति है, गदाधर शक्ति यानी कि श्रीमती राधारानी की शक्ति है, गदाधर पंडित की इच्छा को ही पूरा करने के लिए आए हैं। जिस श्रीमती राधारानी ने नवदीप धाम को प्रकट किया उसी धाम को पुनः प्रकट किया भक्तिराव ठाकुर ने, यानी श्रीमती राधारानी का कार्य ही किया भक्तिराव ठाकुर ने। इसलिए ये गौर शक्ति या गदाधर शक्ति श्रील भक्तिराव ठाकुर एक अद्वितीय व्यक्ति थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा किया। और एक बार और भी कई सारी घटनाएं हैं इसके अलावा, ये तो यहाँ पर तुर्भाव हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कथा समाप्त हो गई, अभी और भी कई सारी बातें हैं। भक्ति ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे, उसमें एक ग्रंथ लिखा था, जो भजन से भरपूर है, जिस ग्रंथ का नाम है गीतमाला। इस गीतमाला में भक्तिराव ठाकुर ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, बताया कि मैं कौन हूं। बोलते हैं वर्णे तड़ित भाषा तारा बली कमल मंजरी नाम, 12.5 वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम। तो भक्तिराव ठाकुर क्या कहते हैं कि कमल मंजरी की जो कांति है, देह की कांति है, वो किस तरह से है, एक तड़ित के रूप में, एक लाइट बिजली की तरह है। हर ड्रेस रिसेंबल द स्टार्स इन द स्काई, उनका जो वस्त्र है वो नक्षत्रों के समान है, आकाश में नक्षत्रों के समान है। और 12.5 वर्ष उनकी उम्र है, ये उनके इटर्नल एज है भक्तिराव ठाकुर का कमल मंजरी के रूप में। एंड शी राइज़ इन हर ग्रूव, अपने निकुंज में वास करती है, स्वानंद सुखद कुंज, ये ललिता जी का कुंज है, स्वानंद सुखद कुंज में भक्तिराव ठाकुर कमल मंजरी के रूप में सेवा करते। क्या सेवा उनकी? श्री कर्पूर सेवा ललितार गण, राधा युतेश्वरी हन ममेश्वरी ना श्री नंद नंदन अमान प्राण धन। बोलते कमल मंजरी की सेवा क्या है? कर्पूर की सेवा है, और ललिता जी के अनुयायी हैं जो कि राधारानी की, राधारानी जिसके युथेश्वरी है उनके युथ में है, और नंद महाराज के सुपुत्र कृष्ण जो कि वास्तव में राधारानी को बहुत प्रिय है, वो मेरे प्राण है, मेरे धन है। तो ये वास्तव में कमल मंजरी उनका स्वरूप है। सामान्यतः हम अपने स्वरूप को वैष्णव आचार्य अपने स्वरूप को नहीं बताते हैं, लेकिन महाराचार्य इस तरह से अपना स्वरूप प्रकट करते हैं ये बताने के लिए कि वास्तव में ये साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के धाम से आए हुए नित्य परिकर हैं, हमारे जैसे लगते जरूर हैं लेकिन इस जगत के नहीं हैं। और ये दिखाने के लिए कि वो आए हैं हमें वापस ले जाने के लिए, उसी नित्य लीला में वापस ले जाने के लिए। तो ये महाराचार्य इतने शक्तिशाली शक्त वेश इनको कहा जाता है, इनको ये अधिकार होता है कि हमें ये भगवान के धाम से जोड़ सकते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश करा सकते हैं। तो इस तरह सिद्धि लालसा में गीत माला में इस प्रकार का वर्णन आता है। एक बार की बात है, भक्तिनाथ ठाकुर रात्रि के समय लगभग 1 बजे जब रासलीला संपन्न हो जाता है, उस समय भक्तिनाथ ठाकुर हरिनाम ले रहे थे और अष्टकाली लीला का स्मरण कर रहे थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने अचानक क्या हुआ, रोने लग गए और रोते रोते उन्होंने माला रोक दी और बीट बैग साइड में रखा और किचन की तरफ बड़ी तेजी से भागे और किचन में जाकर पूड़ियां बनाने लगे रात को 1 बजे। तो उनके जो सुपुत्र थे उनको आवाज आई पास में, यानी कि बिमला प्रसाद को, श्री भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर को। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जाके देखे कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ प्रभु, आप किचन में अर्धरात्रि को 1 बजे कुकिंग कर रहे हैं, इस समय समझ नहीं पाए, इस समय इनको तो भूखने लगेगी, ये तो गलत समय में खाते ही नहीं है। उनका नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा, भक्ति ठाकुर ने कहा, देखो देखो राधारानी को भूख लगी है, अभी भी रासलीला संपन्न हुई है, उनको भूख लगी होगी, मैं राधारानी के लिए कुछ बना रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं कि किस लेवल पर थे भक्ति ठाकुर। तो इस तरह से एक बार समय भक्ति ठाकुर ने कहा भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर के सामने, मैं चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जाके मैं ब्रह्म सरोवर में मैं वहां पर क्या करूंगा, क्या करूंगा, वहां जाके मैं भजन कुटीर बनाऊंगा ब्रह्म सरोवर के पास। तो उनके जो सुपुत्र यानी भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने सोचा कि अरे ये कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहते हैं, भजन करने के लिए तो भक्त लोग अक्सर वृंदावन जाते हैं, ये कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने बहुत विचार किया तो समझ गया, अच्छा अच्छा ठाकुर भक्तिनोद इसलिए जाना चाहते हैं कुरुक्षेत्र, भजन कुटीर वहां बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर राधारानी असहाय अवस्था में है, क्योंकि राधारानी खुश नहीं है कृष्ण बलराम जी को देख, कृष्ण को देखकर राधारानी क्या कह रही है, आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा हूं, मुझे क्या कारण है कि यहां रहकर वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यमुना जी का स्मरण हो रहा है और वहां पे वंशी भट्ट के निकट आप जो बांसुरी बजाते हैं उसका स्मरण हो रहा है, कृष्ण सामने खड़े हैं लेकिन वहां का स्मरण हो रहा है, यह समझ में नहीं आया, क्योंकि कृष्ण राजवेश में द्वारकाधीश साक्षात द्वारकाधीश वहां विराजमान कुरुक्षेत्र में आए, तो राधारानी देखकर खुश नहीं हो रहे, हे द्वारकाधीश कहां है आपकी बंसी, कहां है मोर मुकुट, या लगा रखा है लेकिन है नहीं, द्वारका में मोर मुख नहीं लगाते भगवान, बंसी भी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी लगाया रुक्मिणी द्वारकाधीश को, क्यों, क्योंकि ये हमारे इष्ट है, क्योंकि जो उच्च कोटि के जो वैष्णव होते हैं श्रील प्रभुपाद जी या कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे लिख रहे हैं, वो लेकिन सर्वत्र हो गए निज इष्ट देव स्फूर्ति, जहां भी मैं देखता हूं अपने इष्ट देव की मुझे स्फूर्ति होती है, अरे रुक्मिणी द्वारकाधीश को देखूंगा तभी तो राधा कृष्ण का स्मरण होगा मुझे। इसलिए जब राधा रानी को जब ले गए, कहां ले गए, सूर्य नारायण आपको बताया था पिछली बार, तो उनको जब ले गए तो वहां पर यमुना जी उनको लेकर गई और सूर्य देव के पास पहुंचा दिया उन्होंने, और वहां पर सूर्य देव बोलते हैं कि आप क्यों दुखी होती हैं, कृष्ण गए तो क्या हुआ, ये देखिए सूर्य नारायण खड़े हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने में। तो राधा ने भी कहा मैं जानती हूं सूर्य नारायण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानेगा, ये कृष्ण जैसे सुंदर नहीं है, कृष्ण जैसे सुंदर नहीं। तो राधारानी इसलिए बहुत दुखी हो रही है और बड़ी असहाय अवस्था में, हेल्पलेस सिचुएशन में है। देखिए मान लीजिए आपके घर में आग लग जाए और आप दुकान में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं अपने शॉप में खड़े हैं और पता चला कि आपके घर में आग लग गई है तो क्या करेंगे आप, बताइए, खड़े रहेंगे दुकान में, लगने दो घर में आग, मरने दो सबको, जलने दो सबको, नहीं, आप तुरंत दुकान छोड़ के कहां जाएंगे, घर जाएंगे। इसी तरह से राधारानी असहाय अवस्था में है, कहां कुरुक्षेत्र में, अरे वृंदावन में भजन करके क्या करोगे बताओ यार। तो इसलिए बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य कहते हैं सर्विस नेसेसिटी, जहां सेवा है वही हमारा काम है, वही हमें जाना चाहिए। इसलिए गुरु के द्वारा जो दिया गया सेवा का स्थान है सर्वोपरि स्थान है, वही भजन का स्थान है। इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए भक्तों को, अरे कहां बेहड़ स्थान में भेज दिया, जंगल में भेज दिया, चारों तरफ कोई है नहीं, यहां पर यहां क्या प्रचार करेंगे हम, होता नहीं होता है कई बार, भक्तों का संग नहीं है यहाँ पे, अभी तक मंदिर नहीं बना है, चारों तरफ क्या है, जमीन ही जमीन है और कुछ यहाँ पर क्या है, कंटेनर रखे गए हैं, कहाँ आ गए हम लोग, बड़ा आनंद आ रहा था सीधा वृंदावन में या सीधा मायापुर में भक्तों के संग में, कहां भेज दिया गुरुदेव ने हमें। तो ये भक्तों ठाकुर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, सेवा कुरुक्षेत्र में सेवा का स्थान है, वहां ले जाना चाहिए। वृंदावन में क्या करोगे, वृंदावन में तो राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, उसमें आपकी क्या सेवा है। जब राधा कृष्ण निकुंज में उनका मिलन होता है तो उस समय आपका क्या रोल है, बाहर चलो या दूर होकर सेवा करो। लेकिन कुरुक्षेत्र में राधाणी असहाय अवस्था में खड़ी है और कृष्ण को देखकर जो है बड़ी दुखी है और सांत्वना देना चाहती है, कौन, गोपियां और मंजरियां। तो यहां भक्त ठाकुर क्या बता रहे हैं, कमल मंजरी है, उनकी सेवा क्या है, राधाणी की सेवा करना, यह उनके लिए सर्वोच्च सेवा है क्योंकि हम राधाणी के पक्ष में। ये मंजरियां क्या है, राधा स्नेहादिका है, राधा रानी को बहुत प्रिय है और ये बहुत प्रिय है राधाणी को और राधाणी को बहुत प्रिय है, इसलिए राधाणी की सेवा में जहां भी सेवा की आवश्यकता है वहां पे जाएंगे। इसलिए भक्त ठाकुर कहते हैं मैं ब्रह्मपुर में जाके भजन कुटी बनाऊंगा क्योंकि राधाणी वहां पे असहाय अवस्था में है, गोपियां भी वहां इसलिए गई है साथ में उनको सांत्वना देने के लिए, मैं भी जाके वो ये सेवा करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज समझ जाते हैं, वाह क्या बात है। आप देखिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वयं नयनमणि मंजरी है लेकिन उनसे ऊंचे स्तर में कौन है, कमल मंजरी है, यानी भक्ति ठाकुर है। इसलिए तो देखिए श्रील गोरकृष्ण बाबा जी महाराज जो बाबा जी वैष्णव परमहंस वैष्णव है वो भक्ति ठाकुर से आकर शिक्षा लेते थे, रोज आकर उनसे भागवत कथा सुनते थे। तो सोच के देखिए भक्त ठाकुर कितने उच्च कोटि के वैष्णव थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थात मस्त भी परमहंस लाइक भक्ति ठाकुर। तो इस तरह से भक्ति ठाकुर जो है हमारे बहुत ही विशेष आचार्य हैं। और भक्त ठाकुर ने अपना एक भाव व्यक्त किया श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को जो हम सबको भी याद रखना चाहिए। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, लास्ट लेटर था इनका भक्ति ठाकुर का अपने सुपुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को। और जिस चिट्ठी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद ने जो किया है वो इन्हीं आचार्यों की इच्छा को पूरा की है। ये सुनिए बड़े ध्यान से चिट्ठी। सरस्वती, people of this world who are proud of their own aristocratic birth attack the pure Vaishnava, thus they commit offenses. यानी कि संसार के लोग क्या करते हैं, अपने धन के कारण, अपनी संपत्ति के कारण, अपने यश के कारण जो है वो क्या करते हैं, अपराध करते हैं, वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं। The solution to the problem is to establish the order of दैवी वर्णाश्रम धर्म। क्योंकि होता क्या है, कोई बाबा जी वेश ले ले तो कोई सम्मान नहीं करता है, तो प्रचार नहीं हो पाता है। सनातन धर्म का प्रचार कैसे होगा जब सम्मान ही नहीं होगा। तो ऐसे वैष्णव को परमहंसों को नहीं जान पाते सामान्य लोग, वैष्णव क्रिया मुद्रा भी क्या हो जाए। अरे कोई व्यक्ति अगर पब्लिक लैट्रिन में बैठ के हरिनाम ले रहा है तो कौन उसके पास जाएगा, कोई नहीं जाएगा। या कोई ऐसे बाबा जी महाराज जो अंशीदास बाबा जी महाराज जीवन भर आए नहीं, उनके पास कौन जाएगा। तो ये बड़े अद्भुत वैष्णव है, तो वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहां पर भक्तिनाथ ठाकुर क्या लिख रहे हैं कि वो अपराध करते हैं और सबका सोल्यूशन जानते हैं, क्या हल है, दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना, भक्त ठाकुर कहते हैं। इसलिए भक्त ठाकुर ने चेतन शिक्षामृत में भी लिखा कि साधना हम कर सकते हैं कब, जब हम स्वयं दैवी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हों। जब तक हम वर्णाश्रम धर्म को नहीं अपना लेंगे हम साधना भक्ति हम ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए जब तक कोई बद्ध अवस्था में है उसको वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर साधना करनी चाहिए। एक बार ऐसे हुआ था, 1935 की बात है, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर के शिष्य गए थे राधापुर गए थे और वहां के कोई बहुत बड़े महंत थे, बाबा जी थे, तो उनसे चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपके जो गुरुदेव हैं उन्होंने शूद्र में परिवार में जो जन्म लिए हैं उनको भी ब्राह्मण दीक्षा दे दी है, उनको बिगड़े की सेवा में लगा दिया है, ये सब ठीक नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा ठीक है हमारे गुरुदेव ने ऐसा किया लेकिन पांच रात्रि की विधि के अनुसार किया है और पहले उनको हरिनाम दिया है और धीरे धीरे जैसे जैसे योग्य बनते गए उनको मंत्र दिया है और इस तरह से उनको ब्राह्मण दीक्षा दी है, वगैरह की सेवा में लगाया है। तो ये विकास उनका हुआ है, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, क्रमशः उनका विकास किया गया। लेकिन मुझे आपके यहां कुछ बात समझ नहीं आती, कल तक जो पान बेचता था, कल तक जो बीड़ी बेचता था, कल तक जो जमीन साफ करता था, कल तक जो या सब्जी बेचता था, ठेला वाला, सफाई करने वाला, भंगी चमार, आज वो वैष्णव भेद प्राप्त करके परमहंस वेश में घूम रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आप हमें आरोप लगा रहे हैं कि हमने गलत किया लेकिन यहां जो हो रहा है ये भी तो ठीक नहीं हुआ। तो यानी कि जो वैष्णव भेद है ये परमहंस वेश है, तो कहने का मतलब है जब तक हम बद्ध अवस्था में है तब तक हम, तब कैसे हम परमहंस वेश धारण कर सकते हैं? पॉइंट ये है, यानी कि जब तक आप बद्ध अवस्था में है तब तक आपको क्या करना होगा? वर्णाश्रम धर्म में रहना होगा। ऐसा भगवान गीता में बता रहे हैं, चातुर्वर्णया माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी गुणों और कर्म के अनुसार विभाजन किया है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं जो गुणों के ऊपर आश्रित है, गुणों के अधीन है और गुणों के आधार पर कर्म करते हैं, उनको तो वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करना चाहिए, उनको वर्ण को स्वीकार करना चाहिए। वर्ण को स्वीकार करने का मतलब आश्रम भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना आश्रम के वर्ण का कोई मतलब नहीं है और बिना वर्ण के आश्रम का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म की साधना बहुत आवश्यक है। भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं चिट्ठी में, फिर क्या लिखते हैं, समथिंग यू शुड स्टार्ट डूइंग, अगर ये जो है आपको कार्य जल्दी शुरू करना चाहिए। यू शुड नो दैट टू बी द रियल सर्विस टू द वैष्णवास। तो ने कहा ये वैष्णव के लिए सबसे अच्छी सेवा हो, इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने स्वयं बाबा जी वेश नहीं लिया, उन्होंने स्वयं संन्यास लिया, स्वयं ही संन्यास लिया, तबदंडी संन्यास लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई है ही नहीं योग्य मुझे संन्यास दे सके। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा कि मेरे गुरु महाराज के अतिरिक्त मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे कोई संन्यास दे, और मेरा कोई गुरु भाई नहीं है जो सन्यासी हो। यहां तक कि श्री रामुर्जा संप्रदाय और यहां तक कि मध्वा संप्रदाय में भी उस समय भी जाति भेद था, वैष्णव संप्रदाय में भी समस्या आ गई थी। यहां तक हम देखते हैं कनक दास के चरित्र में, कनक दास जब उड़पी कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे थे, उड़पी में जहां मध्वाचार्य का व्यासपीठ है, उनका मंदिर है उड़पी कृष्ण का, तो उनको भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि आपने शूद्र परिवार में जन्म लिया, मध्वा संप्रदाय के ब्राह्मण को ऐसा कह रहे थे। और वो बात अलग है कि उड़पी कृष्ण साक्षात भगवान ने, उन्होंने अपना जो है दिशा बदल ली कनक दास को दर्शन देने के लिए जो बाहर खड़े थे। लेकिन ऐसा तो सबके साथ नहीं होने वाला था कि दर्शन देंगे हमेशा भगवान, वो तो हमेशा देने लग गए। लेकिन कहने का मतलब हर व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा था, यहां तक कि वैष्णव संप्रदायों में भी। इस कारण से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने समय परिस्थिति और काल के अनुसार ये देखते हुए कि स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी संन्यास खुद लिया, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी स्वयं संन्यास लिया। किस लिए? उन्होंने ये भाव प्रकट किया, ये विनम्रता प्रकट की कि मैं वैष्णव नहीं हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं वैष्णव नहीं हूं, बाबा जी महाराज भक्तिनोद ठाकुर ये है वास्तव में वैष्णव, मैं तो वैष्णव का सेवक हूं, इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म में रहकर उनकी सेवा करूं। क्योंकि ये आदेश उनको स्वयं भक्तिनोद ठाकुर के द्वारा मिला है कि वो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर जो है धर्म का प्रचार प्रसार करें। वो तभी हो सकता है जब स्वयं वो वर्णाश्रम धर्म में हो। तो बाबा जी इसका रिस्पेक्ट खत्म हो गया था उन दिनों, क्योंकि आप संप्रदाय भी इतने फैल गए थे और जो जेन्युइन बाबा जी थे उनको भी कोई पहचान नहीं रहा था, इसलिए सारा समाज में व्यवस्था बदल गई थी, व्यवस्था बिगड़ गई थी। और फिर क्या बता रहे हैं, बिकॉज प्योर डिवोशनल कंक्लूजन ऑफ नॉट बीइंग प्रीच ऑल काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशन एंड बैड कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग कॉल्ड डिवोशन बाय सच स्यूडो संप्रदाय एज सही ज्ञान अटीवाड़ी। तो भक्तिनाथ ठाकुर वही बता रहे हैं, क्योंकि वास्तव में शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा है और इस धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, तो महापुरुष की शिक्षाओं का यथार्थ प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए जो सही जा लोग इकट्ठे हो गए अटीवाड़ी और ये जो सही ज्ञा है, ये जो जात गोसाई है, औल बाउल संप्रदाय, सखी बेगी है, इन सब संप्रदायों का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये समय में खत्म करना है। कैसे? वर्णाश्रम धर्म की साधना कर। प्लीज ऑलवेज क्रश दिस एंटी डिवोशनल कंसेप्ट्स बाय प्रीचिंग प्योर डिवोशनल कंसेप्शन एंड बाय सेटिंग अप एन एग्जांपल। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज को क्या कह रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि इसको क्रश कर दो, ध्वस्त कर दो, इसको एंटी डिवोशनल जो कंसेप्ट है इनको खत्म कर दो। इसलिए जगन्नाथपुरी में भी जब भक्तिनाथ ठाकुर वहां रह रहे थे और भक्ति सिद्धार्थ महाराज वहां प्रचार करना शुरू कर दिया था, तो बहुत हैवी प्रीचिंग किया था भक्ति सिद्धार्थ महाराज, जिस कारण से भक्तिनाथ ठाकुर को वहां से उनको भेजना पड़ा, क्योंकि कई लोग उनके दुश्मन मर गए थे उनको मारने के लिए। तो इसलिए लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर की आज्ञा थी कि आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी भी समझौता मत करना। एक बार ऐसे ही हुआ था कि भक्तिनाथ ठाकुर से कोई एक और कोई बाबा जी मिलने आए थे, तो फिर क्या हुआ कि भक्ति सिद्धार्थ श्री ठाकुर पास में बैठे थे, उन्होंने दंडवत किया और चले, तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा कि मैं आया और ये उठ के चला गया। उन्होंने कहा कि भक्तिनाथ जी आप बताइए क्या कारण है, मैं आया और ये उठ के चला गया। तो उन्होंने क्या किया, क्या उत्तर दिया जानता है भक्तिनाथ ठाकुर ने? उन्होंने कहा कि मेरा जो लड़का है ना बिमला प्रसाद, ये साहित्यों का संग नहीं मिलता। बहुत हैवी बात होता है, तो भक्ति सिद्धांत सज्जन ठाकुर चले गए, उनके चले गए। तो इस तरह से भक्ति ठाकुर जो है ये लिख रहे हैं यहां पर कि इन सबको ध्वस्त करो, आप सिद्धांत को ध्वस्त करो और आचरण के द्वारा स्थापित करो। प्लीज ट्राई वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट सर्विस टू श्री मायापुर विल बिकम अ परमानेंट थिंग। सीधा मायापुर की सेवा चलती रहे ऐसा कुछ करो वहां पर। फिर क्या बता रहे हैं, क्या है रियल सर्विस मायापुर के लिए, असली सेवा क्या है? द रियल सर्विस टू मायापुर कैन बी डन बाय एक्वायरिंग प्रिंटिंग प्रेसेस। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेसेस वहां पर स्थापित करो, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करो और ये करोगे और जगह भी प्रिंटिंग प्रेसेस की स्थापना करो, जैसे मद्रास में उन्होंने किया, शायद कलकत्ता में भी किया, अलग अलग स्थानों में किया। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवोशनल बुक्स, भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि ग्रंथों का वितरण करें। एंड संकीर्तन प्रीचिंग, संकीर्तन प्रचार के द्वारा मायापुर की असली सेवा होगी। प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट टू सर्व श्री मायापुर और टू प्रीच फॉर द सेक ऑफ योर रिक्लूसिव भजन, यानी अपने भजन के लिए मायापुर धाम की सेवा मत छोड़ना। क्योंकि एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वयं तो बहुत योग्य थे और लगभग 10 वर्षों के लिए 1908 से लेकर 1918 तक उन्होंने क्या किया, निजन भजन किया था श्रीधाम मायापुर में और वहां पे प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते थे और 10 साल में लगभग 10 करोड़ नाम, नहीं 10 करोड़ या 100 करोड़, 1 बिलियन नेम्स भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिया था। और छतरी रख के, बारिश के दिनों में भी छतरी रख के जप करते थे और उन दिनों में चेतन चरितावस्था उन्होंने गौड़ीय भाष्य भी दिया था ऐसी अवस्था में, और चातुर्मासी में रखते थे जिसमें हाथ से लेकर वो प्रसाद नहीं डालते थे मुंह से डायरेक्ट खाते थे प्रसाद और जितना एक बार में आ जाए वो लेते थे बस, ऐसे 4 महीने चातुर्मासी में रखा था। तो इस तरह से उन्हें लगभग 10 साल ही ऑस्टेरिटी की थी। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन डे ही वॉज डांसिंग एंड चैंटिंग इन एक्सटेंसी इन श्रीधाम मायापुर विद द पंचतत्व बट ही लेफ्ट श्रीधाम मायापुर टू स्टार्ट द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर ने भक्ति ठाकुर की इच्छाओं को पूरा किया। और प्लीज केयर टू सर्व श्री मायापुर धाम विच इज सो डियर टू यू, तो आप इनका किस धाम का ख्याल रखना तो आपको बहुत प्रिय है। दिस इज माई स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू यू, भक्ति ठाकुर कहते हैं कि मेरा विशेष आदेश है आपके लिए। आई हैव अ स्पेशल डिजायर टू प्रीच द सिग्निफिकेंस ऑफ सच बुक्स एज श्रीमद् भागवतम षट संदर्भ एंड वेदांत दर्शन। भक्ति ठाकुर कहते हैं मेरी विशेष इच्छा थी कि ये जो ग्रंथ है, जो विशेष ग्रंथ है श्रीमद् भागवत षट संदर्भ और वेदांत दर्शन, इसका प्रकाशन हो, इसका वितरण हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। श्री मायापुर विल प्रॉस्पर, इट विल एस्टैब्लिश एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर। क्या जब मायापुर धाम का प्रॉस्पर करेगा, जब वहां पर एक शिक्षा संस्थान की स्थापना होगी। नेवर मेक एनी एफर्ट टू कलेक्ट नॉलेज, कभी ज्ञान का अनुशीलन मत करना, ज्ञान अर्जित मत करना, किसके लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। नेवर मेक एनी एफर्ट टू कलेक्ट नॉलेज और मनी फॉर योर ओन एंजॉयमेंट, धन संग्रह मत करना इंद्र तृप्ति के लिए, ज्ञान अर्जित मत करना अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। ओनली टू सर्व द लॉर्ड विल यू कलेक्ट दीज थिंग्स, यानी केवल महाप्रभु की सेवा के लिए आप उसका संग्रह करेंगे और अपने लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। साइन केदारनाथ भक्ति नोट। तो इसलिए एक बार आपने बहुत सुंदर बात सुनी थी, सोलेरस भक्ति विकास महाराज जो उन्होंने स्पेशल सेशन दिया था श्री राम मायापुर में, टीचिंग्स ऑफ भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर, उन्होंने बताया था कि बाय सर्विंग भक्ति वेदांत वन विल अंडरस्टैंड द भक्ति सिद्धांत एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड भक्ति सिद्धांत वन विल रिलीज भक्ति। यानी ये भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी की हम सेवा करेंगे तो भक्ति सिद्धांत को समझ पाएंगे और भक्ति सिद्धांत को जब आप समझेंगे तो भक्ति विनोद यानी विनोद का मतलब रिलीज, तब आप भक्ति ठाकुर को रिलीज कर सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को रिलीज कर सकते हैं। तो बहुत ही पवित्र दिन है भक्ति ठाकुर का और भक्ति ठाकुर की शिक्षाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उनका जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाएं उन्होंने अपने भजन में प्रस्तुत किए हैं और ये सब जो भजन है हमको नियमित रूप से गाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कई बार हम भूल जाते हैं इन भजन को, भक्ति ठाकुर के भजन वैसे भी गाते हैं रोज हम, राधा माधव कुंज बिहारी ये भक्ति ठाकुर के द्वारा लिखे गया है और संध्या काल में संध्या आरती ये भी भक्ति ठाकुर के लिखित है, ये सब भक्ति ठाकुर ने दिया है। और यशोमती नंदन ब्रजवर्णागर जो बहुत प्रचलित भजन है उसको भी हम गाते हैं, ये भी भक्ति ठाकुर के द्वारा लिखित। और जो भोग आरती गाते हैं दोपहर में 12 बजे करीब, आज हमें गाना चाहिए 12 बजे, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, बहुत सुंदर भजन, तो ये भक्ति ठाकुर ने लीलास्पर्व में लिखा है भजन। तो ये भजन भी गाया जाता है, काफी अक्सर गाया जाता है, लेकिन हमें समय निकालना चाहिए कि इन वैष्णव भजन को भी गाया जाए और विशेष रूप से भक्तों के समाज में भक्तों को एकत्रित करके और इसकी ट्रांसलेशन अनुवाद भी सबको दिए जाए ताकि लोग समझे भजन की महान महत्वता को समझे। कई वैष्णव आचार्यों का मत है कि हरि नाम में और अधिक आनंद हमें मिलता है जब इन भजन को पहले हम गाते हैं, पहले इन भजन को गाइए उसके बाद हरि नाम लेना शुरू करिए, हरि नाम में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि भजन में क्या है, नाम की महिमा का वर्णन है। तो इस तरह से इन भजन को गाना चाहिए कथा के पहले और कथा के बाद भी। हरे कृष्ण। श्रील भक्तिनो ठाकुर की जय। श्रील भक्तिनो ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की। एक और बहुत सुंदर बात बताया जो ललिता प्रसाद ने लिखा है। ललिता प्रसाद बताते हैं कि भक्तिनो ठाकुर के पास हमेशा एक स्टॉप वॉच होता था और इतने पर्टिकुलर थे अपने डेली शेड्यूल के लिए कि एक एक मिनट काउंट करते थे कि इस समय मुझे क्या करना है, इस समय मुझे क्या करना है। इस तरह से उन्होंने जीवन बिताया, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा वो टाइम कॉन्शियस बहुत होता है और डिवोटी हो तो सुपर कॉन्शियस होगा टाइम, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते थे भक्तिनो ठाकुर। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी है, रात को 12:30 बजे 1 बजे उठ जाते थे, 10 बजे विश्राम करके रात को 1 बजे उठ जाएंगे। तो इस तरह से भक्तिनो ठाकुर का भी शेड्यूल था। ये शेड्यूल ललिता प्रसाद ठाकुर ने दिया है जब वो खासकर जगन्नाथपुरी में थे। 8:10 पर रात्रि को 8:10 पर विश्राम करते, 8 बजे से 10 बजे के बीच, 8 बजे से 10 बजे के बीच में रात्रि को विश्राम करते थे। 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लिखते थे। कितने बजे से कितने बजे तक? रात को सोते नहीं थे, वो लिखने का टाइम होता था। रेस्टिंग टाइम क्या था? 8 PM to 10 PM बस हो गया। उसके रात्रि पूरी रात बैठकर, इसलिए शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर थे कलकत्ता में, उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा कि मैं 6 गोस्वामियों को नहीं जानता हूं लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप सप्तम गोस्वामी हैं, यू आर द 7th गोस्वामी। भक्तिनो ठाकुर के लिखा, उन्होंने लेटर लिखा था। 10 से 4 बजे वो लिखते थे, 4 से 4:30 बजे रेस्ट करते थे सुबह, और 4:30 से 7 बजे तक जप करते थे, 7 से 7:30 बजे चिट्ठियों को उत्तर देते थे 7 to 7:30, 7:30 से 9:30 शास्त्रों का अध्ययन करते थे, 9:30 से 10 बजे तक स्नान करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे जिसमें 1/2 लीटर मिल्क, फ्रूट्स और 2 चपाती, 10 से 1 बजे तक कोर्ट जाते थे कोर्ट ड्यूटीज, 1 से 2 बजे वापस आते थे घर में रिफ्रेश होने के लिए, 2 से 5 बजे तक फिर कोर्ट जाते थे, 5 से 7 बजे तक जो संस्कृत में लिखे हुए शास्त्र थे ग्रंथ थे उनको बंगाली में अनुवाद करते थे, 7 से 8 बजे तक स्नान करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे जिसमें 1/2 लीटर दूध, चावल और 2 चपाती। ये उनका समरी है पूरे डेली शेड्यूल का। 3 घंटे विश्राम, 8:30 घंटे लिखना, जप और अध्ययन 4.5 घंटे और 6 घंटे नौकरी पे जाना। तो ये इनका पूरा जो है डेली शेड्यूल हुआ करता था जगन्नाथपुरी, विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में। और ये बता दें कि भक्तिनो ठाकुर क्योंकि इतने प्रचलित थे एज ए मजिस्ट्रेट और जब रिटायर होना चाहते थे रिटायरमेंट को मिल नहीं रहा था, कृष्णानगर में निवास करने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इतनी खुश थी तो जो उनका घर बनाया बाद में उन्होंने गोद्रम द्वीप में स्वानंद सुखद गुण, वहां से लेकर उन्होंने कृष्णानगर तक रेलवे लाइन बिछा दी। उन्होंने कहा मेरे पास खाली समय नहीं होना चाहिए, मतलब फालतू समय नहीं है कि मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलूं सीधा ट्रेन के अंदर बैठूं, जैसे कार खड़ी हो बाहर ऑफिस के बाहर रेलवे लाइन बिछा हुआ है सीधा ट्रेन के अंदर घुस जाओ और जहां तुम उतरोगे वहां उतरते ही सामने घर गेट है। अब देखिए भक्तिनो ठाकुर के घर के बिल्कुल बाहर रेलवे ट्रैक है और उसमें चढ़ते थे भक्तिनो ठाकुर, वहां ट्रेन रुकती थी उनके लिए स्पेशली, उस ट्रेन में चढ़ते थे सीधा कृष्णानगर जाते थे, कृष्णानगर में जैसे ही उतरते थे ट्रेन से नहीं सामने ऑफिस। तो ये भक्तिनो ठाकुर का एक पॉपुलैरिटी था उस समय की, यहाँ तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, आजकल तो इंडियन सेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की खूबी यह थी कि हालांकि उनमें बहुत सारी बुराइयां थी लेकिन ब्रिटिश अंग्रेज सरकार में खूबी यह थी कि रिलीजन को धर्म के प्रचारकों को जो जेन्युइन होते थे उनको काफी इंकरेज करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से भक्तिनो ठाकुर को भी बहुत सपोर्ट मिला। हम एक भजन गाएंगे अभी तो आप सब साथ साथ दोहराइए। भक्तिनो ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे थे, भजन के कई ग्रंथ लिखे हैं, गीतावली, गीता, गीतमाला, कल्याण कल्पतरु, शरणागति, शरणागति बहुत फेमस उनका जो है भजन का ग्रंथ है। ये बहुत सुंदर भजन है भक्ति ठाकुर का। उदिलो अरुण पूर्व भागे द्विजमनी घोरा अमनी जागे भक्त समूह लोहिया साथे केला नगर ब्राह्मण। हरे कृष्ण।
चरणे नू
सोते सोते एक दिन को शरीर के श्रृंगार में ही व्यतीत कर दिया है, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। मुकुंद माधव या तो हरि इत्यादि भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करो। हरि हरि बोल। विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। अभी यदि तुमने यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत लज्जा की बात है। तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यवस्था में बीता जा रहा है। जब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो, अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं मानते। कि एक तो ये जीवन अनित्य है तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विविधाएं हैं। तुम यत्न पूर्वक लाभ का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त सांसारिक व्यवहार करो। जीवों का कल्याण करने के लिए ही ये सुमुदर नाम जगत में प्रकट हुआ है, जो ज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित कर देता है। भक्तों ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हरि हरि। बहुत सुंदर भजन भक्तों ठाकुर का था। अब एक भजन और गाएंगे हम लोग, जो कि आखिरी भजन है आज के लिए। बहुत सुंदर भजन है, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पोड़ेची संसार घोरे। बहुत सुंदर भजन है भक्तों ठाकुर के द्वारा लिखित, तुझे हिंदी में मिल जाए तो अच्छा है।
Thank you.
बस तुम्हार चरण सोमिया पोड़े ची तुम्हार भोरे
बोलिए बोलिए पीछे बोलिए याद करिए
सर्वस तुम्हार चरण सोमिया पुण्य ची तुम्हार भोरे तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे
चरण कमलों में अर्पित कर दिया है तथा इस प्रकार मैं आपके घर में आ गया हूं। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूं, कृपया मेरे साथ किसी प्रकार व्यवहार करें। इस तरह से कुत्ते के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसे आप मेरे साथ व्यवहार करें।
बालिया निकटे हमारे पाली में बालिया निकटे बालिया निकटे हमारे पाली में रोही वो तुम्हारो नारे रोही वो तुम्हारो नारे कभी वो करे
कृपया मुझे बात ले एवं अपने द्वार के निकट कर ले। इस प्रकार से कृपया मेरा निर्वाह करें। मैं किसी के बेटी को आपके घर में पास नहीं आने दूंगा बल्कि उसे दूर तक खदेड़ दूंगा।
सर्वस तुम्हार चरण सोमिया थोड़े सी तुम्हार भोरे सर्वस तुम्हार
जय हो जय हो।
तब ही गगन प्रसाद दे दिया ऊंची शराबी में जा भोजन परमानंदे प्रतिदिन हवे
आपके पार्षद आपका उसी पात्र जो कुछ प्रसाद छोड़ देंगे वही मेरा प्रतिदिन का भोजन होगा तथा मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसका आस्वादन करूंगा। और क्या है भक्ति और ठाकुर कह रहे हैं
बसिया चोया तुम्हारो चरण बसिया बसिया चोया तुम्हारो चरण किंती नाचते नाचते नीचे
चाहे मैं बैठा हूं या सो रहा हूं, मैं सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करूंगा। आप कभी मुझे बुलाएंगे, मैं नाश्ता हुआ आपके पास आ जाऊंगा।
निजे पोषण सबुना भागिबो रहिबो भागे हमारे, निजे पोषण सबुना भागिबो
की। कभी भी चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मैं सदैव आपके परम आनंददायक प्रेम में निमग्न रहूंगा। श्रील भगवान ठाकुर आपको अपना एकमात्र पालन करता स्वीकार करते हैं।
सर्वस तुम्हारे
रुद्रमदेव में लिखा था, रुद्रमदेव की महिमा का वर्णन करते हुए रुद्रमदेव में क्या हो रहा है।
नदिया नदिया को नित्यानंद महाजन पतिया के नाम हटर दिए
Let's go. वितरण करने के अधिकारी हैं, उन्होंने नदिया में गोधूम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने के स्थान नाम हाट का प्रबंध किया है। हरि हरि। हे श्रद्धावान व्यक्तियों, हे श्रद्धावान एवं विश्वसनीय लोगों, हे भाइयों, भगवान के आदेश पर मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण कीजिए। हरि हरि। कृष्ण की आराधना कीजिए और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण कीजिए। हरि हरि।
राधा शून्य होए नमो कृष्ण, कृष्ण माता निज पिता निज धन प्राणिया को सुने निजानंद मारन राम तेरे संकार करो चाहिए तेरे संकार करो चाहिए नाम धर्म धर्मता
पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीजिए। कृष्ण ही आपका आपकी माता है, कृष्ण ही आपके पिता है और कृष्ण ही आपके प्राण आधार है। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर कृष्ण संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न कीजिए। सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण ही सभी धर्मों का सार है। हरि हरि। हरि हरि।
ठाकुर की
श्री
ठाकुर आविर्भाव की।
बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय। बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय, सुर भी कौन जेते नामे हाथ खुले छे, खोद नीता खोद नीता खोद नीता है, मतलब खुद नीताई ने खोला, खोड़ा नहीं है। इसको खुद को बंगाली में खोद बोल लेते हैं, जैसे खोड़ा हो गया वहां से, खोड़ा नहीं है, खोद भी नहीं है, खुद खुद को कई बार बंगाली में प्रोनाउंस कर देते हैं खोद, खोद नीताई, खोद नीताई। बड़ मजर को साथाय, बड़ मजर को साथाय, सदा मुले शुद्ध नाम से हाटे ते विकार, सदा मुले शुद्ध नाम से हाटे ते विकार, जत भक्त वृंदावासी, जत भक्त वृंदावासी, जत भक्त वृंदावासी, जत भक्त वृंदावासी, अधिकारी देखे नाम बेचे दोषी, अधिकारी देखे नाम बेचे दोषी, खोद नीताई, खोद नीताई, खोद नीताई, खोद नीताई।
मैं महाप्रसन्नता की खबर का गान कर रहा हूँ। श्री नवदीप में सुरभि कुंज नामक स्थान पर अब पवित्र भगवान नाम का बाजार खुल गया है। हरि हरि, उसके मालिक है। उस आनंदमय बाजार में ऐसी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। श्री नित्यानंद प्रभु केवल व्यक्ति की श्रद्धा की कीमत चुकाने के लिए शुद्ध एवं पवित्र नाम को थोक में अर्थात कम दामों में बेच रहे हैं। हरि हरि, भगवान नाम को खरीदने के लिए उत्सुकता और प्रतीक्षा करते हुए भक्तों की सभा देखकर नित्यानंद प्रभु उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम उनमें से प्रत्येक की परीक्षा लेते हैं, उनकी जांच करते हैं, तो अपनी कीमत के अनुसार सौदेबाजी करके उन्हें भगवान नाम बेचते हैं।
जो दीना मुकिन में भाई, जो दीना मुकिन में भाई, हमार संगे चलो महाजने का छे जाए, खोद नीताई, खोद नीताई, तुम्हें किन्वे कृष्णा, तुम्हें किन्वे कृष्णा, तुम्हें किन्वे कृष्णा, तुम्हें किन्वे कृष्णा, I
तुम शुद्ध भक्त एवं पवित्र भगवान राम को प्राप्त कर पाओगे। मैं भी दलाली कमीशन ले लूंगा और इस प्रकार हम तीनों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। हरी हरी
बड़ गया नित्यानंदा, बड़ गया नित्यानंदा, बार देख ले चौके जाल, एक बार देख ले चौके जाल, गौर बोले निताय दे सकल संभार, गौर बोले निताय दे सकल संभार, शुद्ध कृष्ण शिक्षा देव, शुद्ध कृष्ण शिक्षा, जाति धान विद्या वर्ण करे अपेक्षा, जाति धान विद्या वर्ण करे अपेक्षा,
साधारण रूप से इतने अधिक उदार व दयालु है कि पवित्र भगवान राम में व्यक्ति को केवल श्रद्धा को ही स्वीकार करके वे श्रेष्ठतम दिव्य आनंद प्रदान कर देते हैं। जब मिठाई गौर के नाम को उच्चारण करने पर किसी व्यक्ति के नेत्र में अश्रु बहते हुए देखते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति को अपना आश्रय दे देते हैं। वस्तुतः वे उस समस्त दिव्य ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। वे उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं की अर्थात अनुभूति प्रदान कर देते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में मिलती है कि सारी अचिंत कृपा का प्रदर्शन करते हुए वे व्यक्ति की जाति भौतिक संपत्ति साधारण भौतिक ज्ञान या शारीरिक योग्यता की और कोई ध्यान नहीं देते। हरि हरि
अमी छड़े माया जाल, अमी छड़े माया जाल, अमी छड़े माया जाल, अमी छड़े माया जाल, थके बने थके न थके जंगा,
माया के जाल में फंसाने वाले समस्त बंधनों को अस्वीकार कर दो चाहे हम घर में रहे या मन में रहे, माया के जंजाल से बचकर रहे। हरि हरि। हमें अब और अधिक झगड़े व कलह की भयानक युग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यंत उदार एवं दयालु भगवान नित्यानंद किसी को भी और प्रत्येक को पवित्र भगवान नाम का प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि लोगों में सबसे निम्न व्यक्ति चंडाल को भी। भक्तिराज ठाकुर जोर से पुकारते हैं और सभी को घोषणा करते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है।
जय भक्ति दिनो, जय भक्ति दिनो, भक्ति दिनो, भक्ति दिनो, जय भक्ति दिनो, भक्ति दिनो, भक्ति दिनो, भक्ति दिनो,
ठाकुर ठाकुर बारह बजे है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि होगा उस समय हमारे भक्त आपको और भजन सुनाएंगे भोग आरती का, और आनंद लीजिएगा। हरे कृष्ण।